اور غالباً بھائی میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کافی ٹیپ ریکارڈز موجود ہیں اور بلا شبہ وہ ان ٹیپ ریکارڈز کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور کسی بھی وقت اگر آپ معلوم کرنا چاہیں کہ رولکس نے آپ سے کیا بیان کیا تھا تو ان بھائیوں سے ملیں جو یہاں ٹیپ ریکارڈز لائے ہیں اور وہ ٹیپ دوبارہ چلا دیں گے اور آپ عین درست طور پر اپنا مسئلہ حل کر لیں گے۔ آپ دیکھیں اور سمجھیں کہ جیسا کہا گیا ہے این ویسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں۔ جب آپ اسے یہ کہتے ہوئے سنیں خداوند یوں فرماتا ہے کہ فلاں کام ایسے ایسے ہوگا، یا اگر آپ نظر ثانی کرنا چاہتے ہوں کہ کوئی بات ٹھیک تھی یا کہ نہیں، دیکھیں یہ ہمیشہ اسی طرح پوری ہوتی ہیں۔ اب ذرا پس منظر کے لیے میں آج رات کچھ خوش سا ہوں کہ ہم چند لوگ یہاں موجود ہیں۔ ہم تو جیسے ایک ہی گھرانے کے لوگ ہیں، کیا ہم نہیں ہیں؟ ہم نہیں ہیں، ہم میں سے کوئی اجنبی نہیں، ہم نہیں ہیں۔ اب میں خود کو گھر میں محسوس کر رہا ہوں اور یوں میں اپنی کینٹکی گرامر استعمال کر سکتا ہوں، سبب ہم ہیں، صرف ہم ہیں۔ اگر کوئی کینٹکی کا باشندہ یہاں ہے تو میں کینٹکی کو نظر انداز نہیں کروں گا۔ کیا کوئی یہاں کینٹکی کا ہے؟ اپنا ہاتھ بلند کرے۔ میں کہتا ہوں کہ خود کو بالکل گھر میں محسوس کر رہا ہوں، کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ بہت عمدہ احساس ہے۔ میری ماں ایک بورڈنگ ہاؤس چلاتی تھی۔ ایک دن میں وہاں معلوم کرنے گیا اور وہاں بہت سے آدمی رہائش پذیر تھے اور ایک بہت لمبی میز لگی ہوئی تھی، اور میں نے کہا جتنے لوگ کینٹکی سے ہیں کھڑے ہو جائیں، اور سب ہی کھڑے ہو گئے۔ اور اسی رات میں گرجے میں آیا اور میں نے اپنے گرجے میں کہا کتنے یہاں کینٹکی سے ہیں، سب ہی کھڑے ہو گئے۔ میں کہوں گا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، مشنریوں نے بہت اچھا کام کیا ہے جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ اب رومیو کی کتاب 11 باب کی 28 آیت میں، کلام کی تلاوت کو اب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔
As concerning the gospel, they are enemies for your sake.
انجیل کے اعتبار سے وہ تمہاری خاطر دشمن ہیں، لیکن برگزیدگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں، اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوا بے تبدیل ہے۔ ہم دعا کریں گے، خداوند آج رات ہماری مدد فرما کہ ہم بڑے ادب کے ساتھ اور پورے خلوص دل سے اور دیانتداری سے آگے بڑھیں اور سب باتیں تیرے جلال کے لیے بتائی جائیں۔ خداوند میری مدد کر اور میرے ذہن میں وہ باتیں ڈال جو بیان کرنی ہیں اور کتنی بیان کرنی ہیں، اور جب تیرا وقت پورا ہو جائے تو مجھے روک دینا۔ میری التماس ہے کہ ہر دل ان باتوں کو قبول کرے تاکہ سامعین میں سے جو ضرورت مند اور بیمار ہیں وہ فیض یاب ہو سکیں۔ یہ میں یسوع مسیح کے نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ اب اگرچہ ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، لیکن میں اس مضمون تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو زیادہ دیر نہ بٹھاؤں۔ میں اپنی گھڑی یہاں رکھ رہا ہوں اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو وقت پر فارغ کر دوں تاکہ آپ کل رات یہاں آ سکیں۔ اب دعا کے متعلق بات یوں ہے، میں نہیں جانتا کہ نوجوان نے دعائیہ کارڈ تقسیم کر دیے ہیں، میں نے اس سے نہیں پوچھا، بلکہ اس، اور اگر انہوں نے کارڈ دے دیے ہوں یا نہ دیے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم لوگوں کو دعا کے لیے بلانا چاہتے ہوں تو ہم کارڈ دیا کرتے ہیں، اس لیے اگر ایسا نہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ رولکس کیا کہتا ہے۔ اب اگر آپ توجہ سے سنیں گے، اب یہ ہو سکتا ہے کہ میں، چونکہ یہاں ہم چند ہی ہیں اس لیے اس بات کو بیان کرنے کا اچھا موقع ہے، اس کا سبب کیونکہ اس کا تعلق میری ذات سے ہے، اس لیے آج رات میں نے اس حوالہ کو پڑھا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ نعمتوں اور بلاہٹ کا دار و مدار کسی کی لیاقت پر معقوف نہیں ہے۔ پالوس یہاں کہتے ہیں یہودی انجیل کے اعتبار سے اندھے اور خدا سے دور ہیں ہماری خاطر، لیکن اس سے عین اوپر والی آیت کہتی ہے کہ تمام اسرائیلی نجات پائیں گے، تمام اسرائیلی نجات پائیں گے چناؤ کے اعتبار سے۔ خدا باپ نے ان سے محبت کی اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے تاکہ ہم غیر قوم والے توبہ کا مقام حاصل کر سکیں، تاکہ ابراہیم کے وسیلے، اس کی نسل کے وسیلے، خدا کے کلام کے مطابق تمام دنیا کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے۔ دیکھیں خدا کس قدر عظیم ہے، وہ اپنے کلام کو پورا کرتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ اور اب ہمیں خدا نے ہمیں چنا ہے، اس نے یہودیوں کو بھی چنا ہے، اور وہ ہے، یہ سب باتیں خدا کے پیشگی علم سے ہیں۔ جب اس نے کچھ فرمایا کہ یوں ہوگا تو اس کا علم وہ پہلے سے رکھتا تھا. اب چونکہ خدا خدا ہے اس لیے اس کو ابتدا ہی سے انجام کا علم تھا، ورنہ وہ لامحدود خدا نہ ہوتا. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ یقیناً نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو. لیکن دنیا کی ابتدا یا وقت کے آغاز سے خدا جانتا تھا کہ کون نجات پائے گا اور کون نجات نہیں پائے گا. وہ نہیں چاہتا کہ لوگ ہلاک ہو جائیں، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. مگر وہ ابتدا سے جانتا تھا کہ کون نجات پائے گا اور کون نہیں. یہی سبب ہے کہ وہ پہلے سے کہہ سکتا تھا، یہ بات واقع ہوگی اور وہ بات واقع ہوگی، یا اس طرح ہوگا، یہ شخص اس طرح ہوگا. دیکھیں، کیونکہ وہ لامحدود ہے اس لیے وہ پہلے سے جان سکتا تھا. اگر آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں تو پھر ایسی کوئی چیز نہیں جو خدا کو نامعلوم ہو. دیکھیں، وہ سب جانتا ہے. ٹھیک بات ہے، ہاں کوئی بات وقت کے آغاز سے ہو یا اس وقت کی جب وقت ختم ہو جائے گا، سمجھے، وہ ہر ایک بات سے آگاہ ہے، ہر چیز اس کے ذہن میں موجود ہے. اور پھر جیسے کہ پالوس رومیوں 8 اور 9 باب میں کہتے ہیں، پھر وہ اب تک خرابی کیوں تلاش کرتا ہے؟ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں. لیکن خدا انجیل کی منادی کرتے ہوئے کسی نے مجھ سے کہا، بھائی برینم، کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ میں نے کہا، دیکھیں، اس نے کہا، آپ کو ضرور کیلوینسٹ ہونا چاہیے. میں نے کہا، جب تک کیلوینسٹ بائبل کے اندر ہیں میں کیلوینسٹ ہوں. اب درخت کی ایک شاخ کیلوینزم بھی ہو سکتی ہے، لیکن درخت کی اور بھی تو شاخیں ہیں. درخت کی شاخیں ایک سے زیادہ ہوتی ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ابدی تحفظ حاصل ہونے تک یہ قائم رہیں، اور تھوڑے ہی عرصے بعد آپ یونیورسلزم کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پھر کہیں اور جا پڑتے ہیں. اس کا کوئی اختتام نہیں. لیکن جب آپ کیلوینزم کو پورا کر چکے تو واپس چل کر ارمینین ازم سے شروع کریں. دیکھیں، درخت کی اور بھی شاخیں ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی شاخیں ہیں. آگے بڑھتے جائیں، ساری چیزیں مل کر درخت کو مکمل کرتی ہیں. اس لیے میں کیلوینزم پر ایمان رکھتا ہوں جب تک وہ کتاب مقدس کے اندر ہیں. میرا ایمان ہے کہ خدا بنائے عالم سے پیشتر جانتا تھا. اس نے مسیح میں اپنی کلیسیا کو چن لیا اور بنائے عالم سے پیشتر مسیح کو ذبح کیا. کلام مقدس اسی طرح فرماتا ہے، وہ خدا کا برا تھا جو بنائے عالم سے پیشتر ذبح کیا گیا تھا. دیکھیں، یسوع نے کہا وہ ہمیں دنیا کے بنائے جانے سے پیشتر جانتا تھا. پالوس کہتا ہے کہ وہ ہمیں جانتا تھا، اور اس سے پہلے کہ دنیا تخلیق ہوئی اس نے مسیح یسوع میں ہمیں لے پالک فرزند مقرر کر دیا. وہ خدا ہے، وہ ہمارا باپ ہے. دیکھیں، اس لیے فکر مند نہ ہوں، پہیے درست گھوم رہے ہیں، ہر چیز وقت پر آ رہی ہے، بات صرف باری آنے کی ہے. اور جیسے کہ یہ اس کا بہتر حصہ ہے، جب ہم باری کے مطابق آتے ہیں تو بہتر طور پر سمجھ جاتے ہیں کہ کام کیسے کرنا ہے. اب توجہ دیں، نعمتیں اور بلاہٹ بے تبدیل ہے. صرف یہی طریقہ ہے جس سے میں خداوند میں اپنی بلاہٹ کو کلام مقدس کے مطابق قائم کر سکتا ہوں. اور مجھے بھروسہ ہے کہ آج میں ایسے دوستوں کے ساتھ ہوں جو یقیناً اسے سمجھیں گے اور یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ ذاتی معاملہ ہے، بلکہ جن کے اندر سمجھ موجود ہے، وہ جانتے ہیں کہ خداوند نے جو کہا ہے وہ کرے گا، اور وہ کسی چیز کو کام کرتے دیکھ رہے ہیں اور وہ اس کی پیروی کریں گے. اب ابتدا میں پہلی چیز جسے میں یاد کر سکتا ہوں وہ ایک رویا ہے. پہلی چیز جو میں اپنے ذہن میں لا سکتا ہوں وہ ایک رویا ہے جو خداوند نے مجھے دی. اور بہت بہت سال پہلے کی بات ہے، جب میں ایک چھوٹا بچہ تھا اور میرے ہاتھ میں ایک پتھر تھا. اب میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یاد آیا ہے کہ میں اس وقت لمبا لباس پہنے ہوئے تھا. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کسی عمر رسیدہ شخص کو یاد ہو کہ جب لڑکے لمبا لباس پہنا کرتے تھے. آپ میں سے کتنوں کو یاد ہے، جی ہاں، کہ جب بچے لمبا لباس پہنا کرتے تھے. ٹھیک ہے، میں یاد کر سکتا ہوں کہ جب میں بچہ تھا تو میں اپنے گھر میں جہاں ہم رہتے تھے، میں فرش پر رنگ رہا تھا اور کوئی اندر آیا تھا. میں نہیں جانتا تھا وہ کون تھا جو اندر آیا تھا، اور ماں نے میرے لباس میں ایک ہلکے رنگ کا ریبن سا لگایا ہوا تھا، اور میں اس وقت چلنے کے قابل ہی ہوا تھا. لیکن میں اس وقت رنگ رہا تھا اور میں نے اپنی انگلی اس شخص کے پاؤں پر لگی ہوئی برف پر لگا دی اور اس کے پاؤں سے برف لے کر کھانے لگا. وہ شخص آگ کے پاس کھڑا ہوا تھا تاکہ گرمی حاصل کرے. مجھے یاد ہے کہ میری ماں نے اس پر مجھے جھٹکے سے اٹھا لیا تھا. اور پھر جو بات مجھے یاد ہے وہ اس کے تقریباً 2 سال بعد کی ہے، جب میرے ہاتھ میں ایک پتھر تھا. और उस वक्त मेरी उम्र कोई 3 साल थी और मेरे छोटे भाई की उम्र 2 साल से भी कम थी। हम अकबी सेन में थे जो लकड़ी के छिलकों से भरा हुआ था। वहाँ लकड़ियाँ लाकर चीरी जाती थी। कितने लोगों को याद है जब लकड़ियाँ अकबी सेन में लाकर चीरी जाती थी और वहाँ उनको काटा और चीरा जाता था। आज रात मैंने टाई क्यों लगाई हुई है? मैं तो ठीक अपने ही घर में हूँ। और फिर जब वो उस अकबी सेन के करीब से एक चश्मे की शाख गुजरती थी, हमारे पास एक कद्दू का प्याला था जिससे हम चश्मे से पानी निकालकर एक पुरानी बाल्टी में जो देवदार की बनी हुई थी भरकर लाते थे। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी बूढ़ी दादी माँ को उनकी वफात से पहले आखिरी बार देखा, उस वक्त उनकी उम्र 110 साल थी और जब वो फोत हुई तो उनकी वफात से पहले मैं उन्हें अपने बाजुओं में ठाकर लाया था। उन्होंने मुझे अपने बाजुओं में लेकर कहा, मेरे प्यारे बच्चे, खुदा तुम्हारी रूह को अब और हमेशा बरकत दे। और फिर वो वफात पा गईं। और मैं नहीं जानता कि उस खातून ने कभी जूते का एक जोड़ा लेकर भी अपनी जिंदगी में पहना हो। और मुझे याद है जब मैं उन्हें देखा करता था जबकि मैं एक जवान आदमी था, उनसे मिलने जाया करता था। वो हर सुबह उठकर नंगे पांव बर्फ पर चलकर चश्मे तक जाती और बाल्टी में पानी भरकर लाती थी। उसके पांव बर्फ में लग रहे होते थे। इससे आपको ठेस नहीं लगनी चाहिए कि वो 110 साल तक जिंदा रही। जी हाँ, वो बहुत बहुत मजबूत जिस्म रखती थी। मुझे याद है कि वो मेरे वालिद के संगे मरमर के टुकड़ों के मुतालिक बता रही थी जिनके साथ वो खेला करते थे जब वो छोटे बच्चे थे। वो इतनी बूढ़ी थी, मैं सोचता था कि ये दूसरी मंजिल पर कैसे चढ़ जाती हैं। 2 कमरों का एक छोटा सा मकान था जिसके ऊपर एक चौबारा मौजूद था। उन्होंने 2 छोटे दरख्त काट कर ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनाई हुई थी। ठीक है, मैंने कहा, ठीक है। अब उसने कहा, अब खाने के बाद मैं तुमको तुम्हारे वालिद के संगे मरमर दिखाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है। बस वो ऊपर गई ताकि वो मुझे दिखाए और एक ट्रंक में से वो पत्थर निकाल कर दिखाए जहाँ उन्होंने अपने सामान के साथ रखे हुए थे। बूढ़े लोग ऐसा ही करते थे। और मैंने सोचा, दुनिया की ये बूढ़ी तरीन खातून सीढ़ी पर क्यों कर चढ़ेगी? इसलिए मैंने आगे बढ़कर कहा, दादी माँ, मैंने कहा, अब जरा ठहरें, प्यारी दादी, मैं पहले ऊपर चढ़कर आपकी मदद करता हूँ। उसने कहा, परे खड़े रहो। और वो कैसे गलहरी की तरह ऊपर सीढ़ी पर चढ़ गई। फिर उसने कहा, ठीक है, अब ऊपर आ जाओ। मैंने कहा, ठीक है दादी माँ। मैंने सोचा, काश मैं भी ऐसा बन जाऊँ, काश 110 साल की उम्र में मुझ में भी ऐसी ताकत हो। और फिर मुझे याद है कि मैं उस चश्मे के करीब खड़ा था और मेरे हाथ में एक पत्थर था और मैं उसे फेंकने की कोशिश कर रहा था और अपने छोटे भाई को अपनी ताकत दिखाने के लिए उस पत्थर को फेंकना चाहता था। और एक दरख्त पर एक छोटा सा रावण परिंदा बैठा हुआ था और चहचहा रहा था, रावण के चौगिर्द ऐसे जैसे कि रोने की आवाज। और मैं समझता हूँ कि वो नन्ना रावण मेरे साथ कोई बात कर रहा था। मैंने मुड़कर सुनने की कोशिश की और परिंदा उड़ गया और एक आवाज ने कहा, तेरी जिंदगी का बेशतर हिस्सा न्यू अल्बानी शहर के करीब गुजरेगा। ये मेरी परवरिश के मकाम से 3 मील के फासले पर है। और 1 साल बाद हम उस मकाम पर पहुंच गए। हालांकि न्यू अल्बानी जाने का हमने कभी सोचा भी नहीं था। पूरी जिंदगी में ये बातें कैसे हुई? अब देखें, मेरे खानदान के लोग मजहबी नहीं थे। मेरा वालिद और मेरी वालदा गिरजाघर नहीं जाते थे। इससे पहले वो कैथलिक थे। मेरा अंदाजा है कि मेरा छोटा भतीजा आज रात यहाँ किसी जगह बैठा हुआ है। मुझे इल्म नहीं कि वो एक सिपाही है। मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूँ। वो खुद अभी तक एक कैथलिक है। और कल शाम जब वो यहाँ था तो उसने खुदा के काम देखे। वो प्लेटफॉर्म के करीब खड़ा था। उसने कहा, जब वो वहाँ खड़ा था, उसने कहा, अंकल बिल, वो बहुत अरसा समंदर पार रहा है। उसने कहा, जो कुछ मैंने यहाँ देखा है, उसने कहा, ये कैथलिक कलीसिया में तो नहीं होता। उसने कहा कि मुझे यकीन हो गया है कि अंकल बिल, आप सच्चे हैं। उसने ऐसा कहा। और बस मैंने कहा, मेरे अजीज, सच्चा मैं नहीं बल्कि सच्चा खुदा है। देखें, वो सच्चा है। और फिर उसने कहा, वो फिर मैंने कहा, अब मैं आपको कुछ करने को नहीं कहूंगा मेलवन, लेकिन अपने पूरे दिल के साथ खुदावंद की खिदमत करो। आप जहां चाहें चले जाएं, लेकिन ये यकीन रखें कि यीशु मसीह आपके दिल में पैदा हुआ है। देखें, आपके दिल में, इसके बाद आप जिस कलीसिया में चाहें चले जाएं। अब मुझसे पहले मेरे खानदान के लोग भी कैथलिक थे। मेरे वालिद और वालदा आयरिश थे। इस आयरिश खून में सिर्फ एक तब्दीली आई थी कि मेरी नानी माँ चेरो की इंडियन थी। मेरी वालदा इस तरह मखलूत नस्ल थी। और बस तब मैं मुझको ये मेरी नस्ल है, इसलिए तीन नस्लों के बाद हमारी नस्ल का सिलसिला कमजोर पड़ जाता है। मुकम्मल आयरिश होने में सिर्फ ये रुकावट होती है, इन दोनों खानदानों के नाम हार्वे और ब्रहनम थे, इससे पीछे लांज थे जो अब भी आयरिश हैं। तब तक वो सब कैथलिक थे, इसलिए खुद हमें बचपन में किसी किस्म की मजहबी तालीम नहीं दी गई थी। लेकिन वो नेमते, वो रोयाएं, मैं उस वक्त भी इसी तरह रोयाएं देखता था जैसे अब देखता हूँ। ये सच है, इसलिए कि बलाहट और नेमते बेतब्दील हैं। ये खुदा का इल्मे साबिक है कि खुदा कोई काम कर रहा होता है, मगर मैं इसको अपनी जिंदगी में बयान करने से डरता रहा हूँ। आपने मेरी कहानी एक छोटी सी किताब यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यक्सा है में पढ़ी होगी। मेरा ख्याल है कि ये कुछ और किताबों में भी है। क्या ये बात ठीक है जेनी? क्या ये इसमें भी है? ये कहानी इस किताब में भी है जो इस वक्त हमारे पास है? क्या इसका नाम मेरी सवाने हयात है? मेरा ख्याल है यही है। फिर जब हम, क्या ये हैरत अंगेज बात नहीं? ये मेरी किताबें हैं और मैं खुद इन्हें कभी पढ़ नहीं सका, मगर इन्हें कोई और तहरीर करता है और फिर इबादत में लाने के लिए कोई चीज तैयार हो जाती है। मैं इसमें से गुजरा हूँ, इसलिए मैं हमेशा किसी नई होने वाली बात की तलाश में रहता हूँ। अलबत्ता इसी तरह किताबें बहुत अच्छी हैं। मुझे जितना मौका मिल सका है मैंने इनके कुछ हिस्सों को पढ़ा है। और आप जानते हैं कि जब मैं छोटा बच्चा था तो रोया में मेरे साथ कलाम किया गया, और जब 7 बरस का था तो उसने कहा, ना शराब पीना, ना तंबाकू नोशी करना और ना ही अपने बदन को नपाक करना, क्योंकि जब तू बड़ा होगा तुझसे एक काम लिया जाएगा। और आपने इसका जिक्र मेरी किताब में पढ़ा है। ठीक है, ये दुरुस्त है। ये सिलसिला जारी रहा और फिर जब मैं खादम बन गया, ठीक, फिर ये रोयाएं लगातार आना शुरू हो गईं। एक रात मैंने खुदावंद यीशु को देखा। मेरा ईमान है कि मैं ये पाक रूह की इजाजत से कह रहा हूँ, खुदावंद का फरिश्ता जो आता है वो खुदावंद यीशु नहीं है। ये इस रोया में उसकी मानित दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिस रोया में मैंने खुदावंद यीशु को देखा वो छोटे कद का आदमी था, वो वैसा नहीं था। मैं बाहर मैदान में अपने वालिद के लिए दुआ कर रहा था, और जब मैं वापस घर आया और अपने बिस्तर पर चला गया तो उस रात अपने वालिद को देखकर मैंने कहा, ऐ खुदा इसे बचा ले। मेरी वालदा पहले ही नजात हासिल कर चुकी थी और मैंने उसे बपतिस्मा दिया था। तब मैंने सोचा, ओ, मेरा वालिद बहुत शराब पीता है, और मैंने सोचा, काश अगर मैं उसको खुदावन यीशु को कबूल करने पर माइल कर सकूं। और मैं जाकर सामने वाले कमरे में बिस्तर पर लेट गया जो कि दरवाजे के करीब था, और किसी चीज ने मुझसे कहा, उठ और खड़ा हो जा। और मैं उठ गया और अपने पीछे जाओ के खेत में चला गया, और वहाँ मुझसे तकरीबन 10 फुट की दूरी पर एक शख्स खड़ा हुआ था। वो पस्त कद का सफेद लिबास वाला आदमी था, जिसने अपने बाजू यों मोड़ रखे थे, दाढ़ी कदरे छोटी थी और बाल शानों तक आ रहे थे। वो मुझे पहलू की तरफ से देख रहा था, बिल्कुल इस तरह पुरसुकून चेहरे के साथ। लेकिन मैं न समझ सका कि किस तरह उसका एक पांव दूसरे से पीछे था। जब हवा चली तो जाओ के पौधे हिले और उसका लिबास हिलने लगा। मैंने दिल में सोचा, अब जरा ठहरो। मैंने खुद को काट कर देखा और कहा, अब मैं नींद में तो नहीं? और मैंने जाओ का एक तिनका खींचकर देखा। आप जानते हैं, इसे दांतों में मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसे अपने मुंह में डाला। मैंने मुड़कर अपने घर की तरफ देखा। मैंने कहा, क्या मैं वहाँ वालिद के लिए दुआ नहीं कर रहा था और किसी ने मुझे बाहर आने के लिए कहा और वो शख्स वहाँ खड़ा था? मैंने सोचा, ये तो खुदावंद यीशु की तरह दिखाई देता था। मैंने सोचा, अगर ऐसा है तो ये हैरत की बात है। वो सीधा उस तरफ देख रहा था जहाँ अब हमारा घर है। मैं उसका नजारा करने के लिए घूमकर दूसरी तरफ गया और मुझे उसके चेहरे का रुख नजर आया, लेकिन वो मुझे उसको देखने के लिए दूसरी तरफ घूमना पड़ा। और मैंने कहा, उसने कोई हरकत ना की। और मैंने सोचा, मुझे यकीन है कि मैं उसे मुखातिब कर सकता हूँ। मैंने कहा, ऐ यीशु। और जब उसने सुना तो मुड़कर देखा। इस तरह से मुझे सिर्फ इतना ही याद है कि उसने अपने बाजू बढ़ाए। दुनिया में कोई भी ऐसा मुसव्विर नहीं है जो उसके चेहरे के तासुरात तस्वीर में जाहिर कर सके। और जो सबसे अच्छी तस्वीर मैंने देखी है वो होफमैन का बनाया हुआ मसीह का चेहरा है, जिसकी उम्र 33 साल लगती है। मैं इसे अपने तमाम लिटरेचर में इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये उसकी मानित दिखाई देता है और इस तरह ये उसके करीब तरीन मालूम होती है। वो एक ऐसा आदमी दिखाई देता था कि अगर बोले तो दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन उसके अंदर इतनी मोहब्बत और रहम था, यहाँ तक कि आप फिर मुझे बड़ा सदमा हुआ। और जब दिन चढ़ा और मैं होश में आया तो अपने लिबास को आंसुओं से भीगा पाया। फिर मैं जाओ के उस खेत से गुजरकर घर गया। ये बात मैंने अपने एक दोस्त को बताई। उसने कहा, बिली तुम इससे पागल हो जाओगे। उसने कहा ये शैतान की तरफ से है। और उसने मजीद कहा, ऐसी बातों से बेवकूफ ना बनो। उस वक्त मैं बैप्टिस्ट खादम था। ठीक है, फिर मैं अपने एक और पुराने दोस्त के पास गया। मैं बैठ गया और उसे सारी बात बताई। मैंने कहा, भाई साहब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? उसने कहा, ठीक है बिली, मैं तुम्हें बताऊंगा। उसने कहा, मेरा ईमान है कि अगर तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो सिर्फ इसी बात की मुनादी करो जो बाइबल के अंदर मौजूद है, यानी खुदा के फजल वगैरह की। मैं ऐसी किसी आलीशान चीज के पीछे नहीं जाऊंगा। मैंने कहा, जनाब मैं किसी आलीशान चीज के पीछे नहीं जाना चाहता। मैंने कहा, मैं सिर्फ मालूम करना चाहता हूँ कि ये सब क्या है। उसने कहा, बिली बरसों पहले ये चीजें कलीसियाओं में मौजूद होती थी। लेकिन उसने कहा, जब रसूली सिलसिला मुनकता हुआ तो साथ ही ये चीजें खत्म हो गईं। फिर उसने कहा, लेकिन अब इन बातों को देखने वाली जो वही चीज हमारे पास रह गई है, उसने कहा, ये सफली अलूम या शैतीन है। मैंने कहा, अरे भाई मैकेनी, क्या आप इस तरह समझते हैं? उसने कहा, जी जनाब। मैंने कहा, ऐ खुदा मुझ पर रहम कर। मैंने कहा, मैं ओ भाई मैकेनी, क्या आप मेरे साथ दुआ में ठहरेंगे कि खुदा मुझे इससे महफूज रखे? आप जानते हैं मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ और मैं इन बातों में गलती का शिकार नहीं होना चाहता। मैंने कहा, आप मेरे साथ दुआ करें। उसने कहा, मैं ऐसा करूँगा भाई बिली। बस हमने मिलकर उस खादम के घर में दुआ की। मैंने बहुत सारे खादमों से पूछा था, सबने ऐसा ही कहा। फिर मैं उनसे पूछने से डरने लगा क्योंकि वो मुझे बदरू गिरफ्तार समझने लगे थे। इसलिए मैं तो ऐसा बनना नहीं चाहता था। मैं जानता था कि मेरे दिल में कुछ हुआ है। अब यही बात है कि मेरे दिल में कुछ हुआ था और मैं ऐसा बनना नहीं चाहता था, कभी भी नहीं चाहता था। इसके कई साल बाद एक दिन मैंने फर्स्ट बैप्टिस्ट गिरजा में, जिसका मैं उस वक्त रुकन था, मैंने किसी को कहते सुना, कह रहा था, आपको कल रात उन जुनूनियों को सुनना चाहिए था। मैंने सोचा, कौन जुनूनी? मैंने अपने एक गुलूकार दोस्त वॉल्ट जॉनसन से पूछा और उससे पूछा, भाई वॉल्ट वो क्या है? उसने कहा, पेंटिकॉस्टलों का एक ग्रोह। मैंने कहा, क्या? उसने कहा, पेंटिकॉस्टल। उसने कहा, बिली अगर तुमने उन्हें देखा होता। उसने मजीद कहा, वो फर्श पर लेटते और उछल कूद करते हैं। और उसने कहा, वो कहते हैं अगर वो अपने मुंह से किसी नामालूम जबान में ना बुड़बड़ाए तो वो निजात याफ्ता नहीं। मैंने कहा, ये कहाँ पर हैं? ओ, उसने कहा, लोइसविल की दूसरी तरफ साहिबानी इबादत में। उसने कहा, वहाँ बहुत सारे स्याफाम लोग हैं और बिला शुबा। और मैंने कहा, हूँ। और उसने कहा, वहाँ बहुत सारे सफेद फार्म भी हैं। मैंने कहा, क्या वो भी इसी तरह करते हैं? उसने कहा, हाँ हाँ वो भी इसी तरह करते हैं। मैंने कहा, ये तो बड़ी मजाका खेज बात है और लोग इस तरह की चीज में शामिल हो रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है, मेरा अंदाजा है कि हमारे पास वो चीजें होनी चाहिए। एक इतवार की सुबह मुझे कभी नहीं भूलेगा, वो बदहजमी के इलाज के लिए एक खुश्क माल्टे का छिलका उतार रहा था और मेरे लिए ये ऐसे जैसे कल का वाक्या है। और मैंने सोचा, गैर जुबान ऊपर नीचे उछलना कूदना, उनका मजहब किस तरह का होगा? और इस तरह मैंने ये बात जेहन में रख ली। इसके बाद मेरी मुलाकात एक उम्र रसीदा शख्स से गिरजे में हुई जो शायद अब भी कलीसिया में मौजूद हो। वो यहाँ कलीसिया में आया था, उसका नाम जॉन रियान है। मेरी मुलाकात उससे एक मकाम पर हुई। उस बुजुर्ग शख्स की दाढ़ी और बाल बहुत लंबे थे और शायद वो यहाँ मौजूद हो। मेरा ख्याल था हाउस ऑफ डेविड बिंटन हार्बर से था। लोइसविल में उनकी एक जगह थी। मैं उन लोगों को तलाश कर रहा था जिसे वो नबियों का स्कूल कहते थे। इसलिए मेरी सोच ये थी कि मैं जाकर उन्हें देखूं। ठीक है, लेकिन मैंने किसी को फर्श पर लेटते तो ना देखा, लेकिन उनकी तालीम बड़ी अजीब थी। वहीं पर मेरी मुलाकात उस बुजुर्ग से हुई। उसने मुझे अपने घर आने की दावत दी। मैं छुट्टियां गुजारने के लिए गया। एक दिन मैं वहां था और मैं उसके घर में गया, लेकिन वो घर में नहीं था। वो इंडियाना पुलिस के किसी मकाम पर था। उसकी बीवी ने कहा, उसे खुदावन ने बुलाया है। मैंने कहा, तो आपका मतलब है कि आप उन्हें खुले बंदो भागने दिया? उसने कहा, ओ वो खुदा का खादम है। मैंने सुना है कि चंद हफ्ते हुए वो बेचारी बुढ़िया फोत हो गई है। अजीजो, वो अपने शोहर की अकीदत मंद थी। बीवी हो तो ऐसी हो, ये सच है। शोहर गलत हो या दुरुस्त, वो उसे दुरुस्त ही दिखाई देता है। मैंने कहा, ठीक है, मैं जानता था कि वो लोग अब वो भाई रियान, क्या आप यहाँ मौजूद हैं? वो यहाँ मौजूद नहीं है। अगले रोज वो यहाँ मौजूद था। क्यों लड़को, वो यहाँ मौजूद नहीं था? ठीक है, उन्हें जो कुछ भी मयसर होता था उसी पर कनायत करते थे। उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये सच है, मैंने मिशिगन की एक झील से या तालाब से कुछ मछलियाँ पकड़ी थीं और मैं वापस आ गया और मछलियों के साथ उनके घर चला गया, लेकिन उनके घर में मछली तलने के लिए कोई तेल या घी नहीं था। और मैंने कहा, वो आपको इस तरह ही छोड़ गया जबकि घर में कोई चीज नहीं है? उसने कहा, ओ भाई बिल, वो खुदा का खादम है। उसने कहा वो, मैंने अपने दिल में कहा, ठीक है, खुदा इस बूढ़े दिल को बरकत दे, भाई मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। आप अपने शोहर के बारे में इतना अच्छा सोचती हैं, इसलिए मैं आपके साथ शामिल होने और खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। ये दुरुस्त है। आज हमें ऐसी ही औरतों की जरूरत है और ऐसे ही मर्दों की जो अपनी बीवियों के लिए इस तरह की सोच रखें। ये दुरुस्त है। अमेरिका बहुत बेहतर हो जाए अगर शोहर और बीवियां इस तरह इत्तेफाक कर लें, वो ख्वाह दुरुस्त हों या गलत, उनके साथ ही खड़ी रहें। फिर तलाक के इतने वाकयात नहीं होंगे। बस हम आगे को बढ़े। तब मैं आगे बढ़ता रहा घर की तरफ। वापिस आते हुए एक अजीब बात हुई, मेरा मिशवाका से गुजर हुआ। मैंने छोटी छोटी पुरानी कारें गली में खड़ी हुई देखी जिन पर बड़ा सा निशान नुमाया था, सिर्फ यीशु। मैंने सोचा, ये क्या है, सिर्फ यीशु? इसका ताल्लुक लाजमन मजहबी मामले से है। और मैं आगे चला तो साइकिलों पर भी सिर्फ यीशु लिखा हुआ था, कैडिलैक गाड़ियों पर, मॉडल टी फोर्ड और हर चीज पर सिर्फ यीशु लिखा हुआ था। मैंने दिल में कहा, अच्छा है, मगर मैं हैरान हुआ कि ये सब क्या है। मैंने उस निशान की पैरवी में उस जगह को तलाश कर लिया। ये एक मजहबी इज्तमा था जहाँ 150 से 2000 लोग मौजूद थे और वहाँ मैंने ललकारे और उछल कूद का समा देखा। मैंने देखना जारी रखा। मैंने दिल में सोचा, मेरा ख्याल है मैं यही इन जनूनियों को देखूंगा। मेरे पास मेरी पुरानी फोर्ड गाड़ी थी, आप जानते हैं, जिसके बारे में मेरा दावा है कि वो एक घंटे में 30 मील सफर कर सकती है, 15 मील इस तरफ और 15 मील वापसी पर। मैंने गाड़ी एक तरफ रोक दी। मैं जब गाड़ी खड़ी कर चुका तो गली का सफर तय किया, उस जगह के अंदर दाखिल हो गया, उधर देखा और जो कोई खड़ा होने के काबिल था खड़ा हुआ था। मुझे उनके सरों के ऊपर से देखना पड़ रहा था। वो जोर जोर से ललकारते और उछलते और गिरते और मतवातर ऐसा ही जारी रखे हुए थे। मैंने दिल में सोचा, ये किस किस्म के लोग हैं? लेकिन मैं जितनी ज्यादा देर वहाँ खड़ा रहा मैंने ज्यादा अच्छा महसूस किया। मैंने दिल में सोचा, ये तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा, इन लोगों में तो कोई गलती नजर नहीं आती, ये सब पागल नहीं हैं। मैंने उनमें से चंद एक से गुफ्तगू की, इस तरह वो बहुत अच्छे लोग थे। इसलिए मैंने कहा, ठीक, अब यही इबादत थी जिसके बाद मैंने बाहर जाकर रात गुजारी और अगले रोज फिर इबादत में आया। ये वाक्या आपने मेरी सवाने हयात में मुझसे सुना है। मैं प्लेटफॉर्म पर 150 या 200 खादमों या इससे भी ज्यादा खादमों के साथ बैठा था और वो चाहते थे कि हर एक खादम उठकर अपना नाम और अपना मकाम बताए। और मैंने अपने बारे में यूँ बताया, मुबशर विलियम ब्रैनम जेफरसनविल बैप्टिस्ट, और बैठ गया। बस मैं बैठ गया, हर खादम बता रहा था कि उसका ताल्लुक कहाँ से है। बस जब मैं अगली सुबह वहाँ पहुँचा, मैंने वो रात बाहर मकई के खेत में सोकर गुजारी थी और अपनी पतलून को अपनी फोर्ड गाड़ी की 2 सीटों के दरमियान दबाकर इस्त्री किया, आप जानते हैं। मेरे पास यही नकमी सी पतलून और निस्फ अस्तीनों वाली शर्ट थी और आप जानते हैं, जिनको पहनकर मैं अगली सुबह की इबादत में चला गया। जब मैं वहाँ गया तो मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय $3 के, जिनसे मैं सिर्फ घर पहुँचने के लिए पेट्रोल खरीद सकता था। और फिर मैंने कुछ बासी रोटी के टुकड़े ले लिए, आप जानते हैं, ये ठीक है। मैं एक नल के पास गया और अपने ग्लास में वहाँ से पानी लिया, आप जानते हैं, वो बेहतर हालत में थे। और वो रोटी के टुकड़े पानी में डुबोकर नाश्ता किया। अब मैंने उन्हें पानी में डुबोकर खाया, मगर वो दिन में 2 बार खाना खाते थे और मैं उनके साथ शामिल नहीं हो सकता था। मेरे पास नजराने के तौर पर पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उनके साथ शमूलियत ना की। बस मैं फिर अगली सुबह इबादत में गया। उन्होंने कहा, मैं इस वाक्य का इतने हिस्सा बयान करूंगा। जब मैं उस सुबह वहाँ बैठा था और उन्होंने ऐलान किया, हम विलियम ब्रैनम के मुंतजिर हैं। वो एक नौजवान बैप्टिस्ट मुबशर है जो कल रात यहाँ प्लेटफॉर्म पर मौजूद था। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि वो आज सुबह कलाम पेश करें। मैं समझ रहा था कि ये काम मुझ पर इन लोगों के सामने भारी होगा क्योंकि मैं एक बैप्टिस्ट हूँ। बस मैं अपनी नशीत से नीचे छुप गया। मैंने जो नकम्मी सी पतलून और नीम बाजू वाली शर्ट पहनी हुई थी, इसे पादरी नहीं पहनते, आप जानते हैं, मैंने पहन रखी थी। बस और इसलिए मैं अपनी नशीत में छुपकर बैठ गया। اور اس نے دو یا تین مرتبہ پوچھا اور میں ایک سیاہ فام بائی کے ساتھ والی نشست پر بیٹھا تھا۔ وہ اس لیے شمالی علاقوں میں کنونشن کروا رہے تھے کیونکہ جنوبی حصوں میں اس وقت نسلی تفرقہ تھا، جس کی وجہ سے وہ جنوبی علاقوں میں پروگرام نہیں کروا سکتے تھے۔ میں حیران تھا، صرف یسو سے کیا مراد ہے؟ میں نے دل میں سوچا، جب بات یسو کی ہے تو پھر سب ٹھیک ہے، اس لیے جب یہ اس کی بات ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ باقی باتیں کیسی ہیں۔ یوں میں تھوڑی دیر بیٹھا اور انہیں دیکھتا رہا، اور انہوں نے دو تین مرتبہ پھر پکارا۔ میرے ساتھ والے سیاہ فام بھائی نے میری طرف دیکھا، اس نے پوچھا، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ میں اب حقیقت کھلنے والی تھی، میں اس شخص کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا اور نہ بولنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، دیکھو بھائی، ہاں میں اسے جانتا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے تو پھر اسے بلاؤ۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا، وہ میں ہی ہوں، لیکن آپ ذرا دیکھیں۔ میں نے کہا، دیکھیں میرا لباس کتنا بھدا ہے، اٹھ کر وہاں چلے جاؤ۔ میں نے کہا، نہیں میں وہاں نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا، اس طرح کی پتلون اور ٹی شرٹ کے ساتھ؟ اس نے کہا، یہ لوگ کسی کے لباس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور میں نے کہا، ٹھیک ہے دیکھیں، لیکن آپ اس کا ذکر نہ کرنا، سنا؟ میں نے کہا، سمجھے، جو میں نے اس طرح کی بدی پتلون پہنی ہوئی ہے، اس لیے میں وہاں نہیں جانا چاہتا۔ انہوں نے پھر اعلان کیا، کیا کوئی جانتا ہے ولیم برہنم کہاں ہے؟ اس سیاہ فام بھائی نے کہا، وہ یہاں ہے۔ او میرے خدایا، میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں، کیونکہ میں نے آدھے استینوں والی شرٹ پہن رکھی تھی، آپ جانتے ہیں، اس کے بازو بہت چھوٹے تھے، آپ جانتے ہیں، اور نہ ہی میں نے ٹائی لگائی ہوئی تھی، اور میں پلیٹ فارم کی طرف چلا، جبکہ میرے کانوں کی لوہیں گرم ہو گئیں۔ میں نے کبھی مائکروفون استعمال نہیں کیا تھا۔ بس میں نے پیغام شروع کیا، اور جو متن میں نے اس وقت استعمال کیا، میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔ امیر آدمی نے اپنی آنکھیں عالم روا میں کھولی اور پھر چیخ اٹھا، میں نے بہت دفعہ اس طرح کے پیغامات کی تبلیغ کی ہے، جیسے آؤ ایک شخص کو دیکھو، کیا تو اس پر ایمان رکھتا ہے؟ یا پھر وہ چیخ اٹھا، اور میں نے کہنا جاری رکھا، وہاں پھول نہیں تھے اور وہ چیخ اٹھا، وہاں دعا یا عبادت نہیں تھی، اس پر وہ چیخ اٹھا، وہاں بچے نہیں تھے، وہ چیخ اٹھا، وہاں گیت نہیں تھے، وہ چیخ اٹھا، اور پھر میں خود رو پڑا۔ اور اس طرح یہ وقت گزر گیا، کیونکہ وہ سب لوگ میرے چوگرد جمع ہو گئے تھے، اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ ان کے پاس جا کر عبادت کرواؤں۔ میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا، شاید میں بھی ان کی مانند جنونی بن گیا ہوں۔ دیکھیں، بس میں نے سوچا، ہو سکتا ہے، دیکھیں، وہ بہت اچھے لوگ تھے۔ میں وہاں سے باہر نکلا، ایک آدمی نے گائے چرانے والے لڑکوں جیسے جوتے اور ٹوپی پہن رکھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا، میں ٹیکساس کا ایلڈر فلاں فلاں ہوں۔ اور میں نے سوچا، ٹھیک ہے، یہ تو ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے۔ اور ایک دوسرا ساتھی بھی اسی طرح کی پینٹ پہنے ہوئے تھا، جو کہ نیکر باکر کہلاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، جب وہ گولف کھیلتے ہیں تو اسے پہنتے ہیں، اور ان میں سے ایک جرسی سویٹر پہنے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، میں ریورنڈ فلاں فلاں ہوں، فلوریڈا سے، کیا آپ آئیں گے؟ میں نے سوچا، میں اس لڑکے سے بدی پتلون اور ٹی شرٹ میں بھی بہت بہتر ہوں، یہ بہت اچھی ہے۔ بس آپ نے یہ باتیں میری سوانح حیات میں سن رکھی ہیں، اس لیے میں یہیں بس کروں گا اور وہ بات بتاؤں گا جو پہلے کبھی نہیں بتائی۔ پہلی بات جو میں آپ سے پوچھوں گا، میں اسے نظر انداز کیے جا رہا تھا، میں نے اپنی زندگی میں عوام الناس کے سامنے یہ کبھی نہیں کہی۔ اگر آپ میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ جیسی محبت آپ میرے ساتھ پہلے کرتے تھے، اس بیان کے بعد بھی ویسی ہی محبت کریں گے، تو اپنے ہاتھ بلند کریں۔ ٹھیک ہے، آپ نے وعدہ کیا ہے، میں اب آپ کو بتاؤں گا۔ جب اس رات میں اس عبادت میں بیٹھا تھا اور وہ گیت گا رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے، اور وہ یہ چھوٹا گیت گا رہے تھے، میں جانتا ہوں یہ خون تھا، میں جانتا ہوں یہ خون تھا، وہ نشستوں کے درمیانی راستے میں بھاگ رہے تھے، اور وہ سب کچھ اس طرح للکارتے ہوئے خداوند کی تعریف کر رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا، یہ میرے لیے بہت ہی اچھا دکھائی دیتا ہے۔ میں نے بھی شروع کر دیا، اور وہ مسلسل ایمال 2:4, 2:38, 10:49 کے حوالوں کو بیان کیے جا رہے تھے۔ میں نے سوچا، کہا، یہ کلام ہے، میں نے اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا تھا، لیکن ہو، میرے دل میں گویا آگ سی لگ گئی۔ میں نے دل میں کہا، یہ بہت شاندار ہے۔ جب میں ان سے ملا تھا تو میں نے خیال کیا کہ یہ جنونیوں کا گروہ ہے، لیکن اب میں سوچ رہا تھا، اوف، میرے خدایا، یہ گویا فرشتوں کا گروہ ہے۔ دیکھیں، میں نے ایک دم اپنا ذہن بدل لیا۔ بس اگلی صبح خداوند نے مجھے عبادت کرانے کا موقع فراہم کیا تو میں نے سوچا او میرے خدایا میں ان لوگوں کا ساتھ دوں گا. یہ اسی قسم کے لوگ تھے جن کے متعلق میتھوڈسٹ کہا کرتے تھے یہ چیخنے والے ہیں, یہ ان سے کچھ آگے بڑھ گئے ہیں. پھر میں نے یہی سوچا شاید یہ وہی کچھ ہے. بس میں نے دل میں سوچا ٹھیک ہے میں بھی ہوں, میں یہ سب کچھ پسند کرتا ہوں اور ان میں کوئی بات تو ہے جو مجھے پسند ہے, وہ حلیم اور شیریں ہیں. ایک بات تھی جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, یعنی غیر زبانیں بولنا. اس نے مجھے جکڑ لیا اور میں اور وہاں ایک آدمی تھا جس نے کہا یہاں بیٹھیں اور دوسرے کو کہا وہاں بیٹھیں, اور وہ اس گروپ کا سربراہ تھا. ان میں سے ایک کھڑا ہو کر کچھ کہتا اور دوسرا اس کا ترجمہ کرتا اور عبادت کے بارے میں کچھ بیان کرتے تھے. میں نے دل میں سوچا میرے خدایا واہ, مجھے یہ چیز پڑھ کر دیکھنی چاہیے. اور پھر سلسلہ برعکس ہو جاتا, دوسرا شخص غیر زبان میں بات کرتا اور پہلا شخص اس کا ترجمہ کرتا. کلیسیا کے باقی لوگ بھی غیر زبانیں بولتے تھے لیکن ان دو آدمیوں کی طرح ترجمہ نہیں کرتے تھے. اب میں نے دیکھا وہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھ جاتے تھے. میں نے سوچا او میرے خدایا ان کو تو فرشتے ہونا چاہیے. بس جب میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا, خواہ یہ کچھ بھی تھا آپ جانتے ہیں, اور میں اسے نہیں جانتا تھا لیکن یہ مجھے معلوم ہو سکتا تھا. میرے پاس ایک طریقہ تھا کہ اگر خداوند مجھ پر ظاہر کرنا چاہتا تو میں کوئی بھی بات معلوم کر سکتا تھا آپ جانتے ہیں. اور میں نے, اور یہی سبب ہے کہ میں نے کہا تھا یہ بات میں نے عوام الناس کے سامنے کبھی نہیں رکھی. اگر میں در حقیقت جاننا چاہوں تو خداوند اکثر مجھے اس کے متعلق بتا دیتے ہیں, کیونکہ یہی تو نعمت ہے سمجھے. اس لیے آپ اسے لوگوں کے سامنے پھینک نہیں سکتے, یہ سچے موتیوں کو سوروں کے آگے ڈالنے والی بات ہوگی اور یہ ایک پاک چیز ہے اور آپ اس کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کر سکتے. اس لیے خدا مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرائے گا. بھائیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے میں نے کسی بھی بھائی کے متعلق کوئی بری بات معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی. ایک مرتبہ میں ایک آدمی کے ساتھ میز پر بیٹھا ہوا تھا, اس نے اپنا بازو مجھ پر رکھا ہوا تھا اور کہا بھائی برہنم میں آپ سے پیار کرتا ہوں. میں نے کسی چیز کی جنبش محسوس کی, میں نے اس کی طرف دیکھا. وہ مجھے اس طرح نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ حقیقت مجھے معلوم تھی کہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا. دیکھیں سبب یہ تھا کہ وہ بالکل ریاکار تھا جتنا کہ کوئی ریاکار ہو سکتا ہے, اور عین اس کا بازو میرے اوپر تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے, اور ہم اٹھ کر چل دیے. میں یہ معلوم کرنا نہیں چاہتا, میں جس طرح کسی کو جانتا ہوں اسی طرح جانتا رہنا چاہتا ہوں اپنے بھائی کی طرح, اور یوں ہی چلنے دینا چاہتا ہوں اور باقی کام خدا کا ہے سمجھے. اور میں نہیں چاہتا, جاننا نہیں چاہتا, اس طرح کی باتوں کو معلوم کرنے کی خواہش نہیں رکھتا. اور بہت مرتبہ اس طرح کی باتیں یہاں کلیسیا میں واقع نہیں ہوتی, اور میں کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں یا کسی ریستوران میں اور روح کچھ مجھے آنے والی باتیں بتا دیتا ہے. یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اس صداقت کی گواہی دے سکتے ہیں. میں گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں اور کہتا ہوں توجہ دیں, تھوڑی دیر کے بعد ایک کار آئے گی اور یہ فلاں فلاں شخص ہوگا, اس کو اندر لے آنا کیونکہ خداوند نے کہا ہے کہ وہ یہاں آئے گا. جب ہم بازار میں نکلیں گے تو وہاں فلاں بات واقع ہوگی, چوک پر نظر رکھنا کیونکہ آپ کی ٹکر ہو سکتی ہے, اور غور کرتے رہنا اسی طرح ہوتا ہے یا کہ نہیں. یہ باتیں ہمیشہ پوری طرح ثابت ہوتی ہیں. بس آپ کو اس میں زیادہ ملوث نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. یہ خدا کی نعمت ہے, یہ آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ اسے کس لیے استعمال کرتے ہیں. خدا آپ کو ذمہ دار ٹھہرائے گا. موسیٰ کو دیکھیں, موسیٰ خدا کا ایک بھیجا ہوا شخص تھا. کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ پہلے سے مقرر کیا ہوا, پہلے سے چنا ہوا اور نبی بنا کر بھیجا گیا. خدا نے اسے بھیجا اور کہا جا چٹان سے کہے. خدا ہلاک کرنے کا کام ختم کر چکا تھا. اس نے کہا جا چٹان سے کہے اور وہ تجھے پانی دے گی. مگر موسیٰ غصے میں گیا اور چٹان کو لاٹھی ماری لیکن پانی نہ نکلا. اس نے دوبارہ لاٹھی ماری اور کہا اے باغیوں کیا تمہارے لیے اس چٹان سے پانی نکالوں؟ کیا آپ نے دیکھا کہ خدا نے کیا کیا؟ پانی تو نکل آیا لیکن خدا نے کہا موسیٰ یہاں اوپر آ جا. یہ اس کا اختتام تھا. دیکھیں آپ کو غور سے دیکھتے رہنا ہوگا کہ آپ خدا کی نعمتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ایک مناد کی طرح, ایک اچھے مناد کی طرح, اگر کوئی لوگوں سے چندہ یا دولت لینے کی منادی کرے تو خدا اسے اس کا ذمہ دار ٹھہرائے گا. یہ سچ ہے. آپ کو دیکھتے رہنا ہوگا کہ آپ خدا کی نعمتوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں, اور بڑی ناموری یا کسی کلیسیا کے لیے نام پیدا کرنے یا اپنے لیے کوئی بڑا نام حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا. میں تو اس کی بجائے دو یا تین راتیں عبادت کر کے بس کر دوں گا اور عاجزی کے ساتھ بیٹھ جانا پسند کروں گا. آپ جانتے ہیں میرا کیا مطلب ہے جناب؟ ہمیشہ اس مقام پر رہیں جہاں خدا کا ہاتھ آپ کے اوپر رہے. یاد رکھیں یہ اندرونی زندگی ہے. بس اس دن میں نے سوچا ٹھیک ہے میں ان لوگوں کا ساتھ دوں گا. اور مجھے ان لوگوں سے اتنا خبردار کیا گیا تھا اور میں نے دل میں سوچا میں ان لوگوں کے بارے میں جانوں گا. اور پھر عبادت ختم ہو جانے کے بعد میں باہر سین میں ان آدمیوں کو تلاش کرنے لگا. میں نے ارد گرد دیکھا, مجھے ان میں سے ایک نظر آ گیا. میں نے کہا, جناب آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ اس نے کہا, آپ کیسے ہیں؟ پھر اس نے کہا, کیا آپ ہی وہ مناد ہیں جس نے آج صبح پیغام پیش کیا تھا؟ میں نے کہا, اس وقت میری عمر 23 برس تھی. میں نے کہا, جی جناب. اس نے کہا, آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا, برہنم. آپ کا نام کیا ہے؟ اور اس نے مجھے اپنا نام بتایا اور میں نے سوچا, ٹھیک ہے, اب میں اس کی روح کے ساتھ رابطہ قائم کروں گا. اور ابھی مجھے معلوم نہ تھا کہ کیا واقعہ ہوگا. میں نے کہا, ٹھیک ہے. میں نے کہا, جناب, میں نے کہا, آپ لوگوں کے پاس ایک چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے. اس نے کہا, کیا آپ نے ایمان لاتے وقت رول کس پایا؟ میں نے کہا, ٹھیک ہے, مگر میں ایک بیپٹسٹ ہوں. اس نے کہا, کیا آپ نے ایمان لاتے وقت رول کس پایا؟ میں نے کہا, ٹھیک ہے بھائی, آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا, میں اتنا جانتا ہوں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. میں نے کہا, کیونکہ آپ کے پاس ایسی چیز ہے جو بہت زور آور معلوم ہوتی ہے. اس نے کہا, کیا آپ نے کبھی غیر زبانیں بولی ہیں؟ میں نے کہا, نہیں جناب. اس نے کہا, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو رول کچھ نہیں ملا. میں نے کہا, ٹھیک ہے, اگر میں نے رول کچھ نہیں پایا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور اس نے اس طرح کہا, ٹھیک ہے, اگر آپ نے غیر زبان نہیں بولی تو آپ کو رول کچھ نہیں ملا. اس کے ساتھ گفتگو جاری رکھتے ہوئے میں نے پوچھا, اچھا, پھر میں اسے کہاں سے حاصل کروں؟ اس نے کہا, اس کمرے میں چلے جاؤ اور رول کچھ کے طالب ہو جاؤ. اور میں اسے دیکھتا رہا. آپ جانتے ہیں, وہ نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کر رہا تھا, لیکن مجھے معلوم تھا کہ اسے ہلکا سا عجیب احساس ہوا. اس سبب سے کیونکہ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا, اس کی آنکھیں تھوڑی سی شفاف ہو گئیں. اور وہ ایک حقیقی مسیح تھا. وہ بالکل 100% مسیحی تھا. یہ درست ہے, ٹھیک ہے. تب میں نے دل میں کہا, خدا کی تعریف ہو, پتا چل گیا. مجھے مذبح پر جانا ہوگا. میں باہر گیا اور ارد گرد دیکھنے لگا. میں نے سوچا, اب دوسرے آدمی کو تلاش کرتا ہوں. اور جب وہ مجھے ملا, میں نے اس کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا. میں نے پوچھا, جناب آپ کیسے ہیں؟ اس نے کہا, پہلے بتائیے آپ کا تعلق کس کلیسیا سے ہے؟ اس نے کہا, مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ ایک بیپٹسٹ ہیں. میں نے کہا, جی ہاں. اس نے کہا, آپ نے ابھی تک رول کچھ حاصل نہیں کیا؟ کیا حاصل کیا؟ میں نے کہا, اچھا, مجھے معلوم نہیں. اس نے کہا, کیا آپ نے کبھی غیر زبانیں بولی ہیں؟ میں نے کہا, نہیں جناب. اس نے کہا, پھر وہ آپ کو نہیں ملا. میں نے کہا, ٹھیک ہے, میں جانتا ہوں جو آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. میں اسے جانتا ہوں. میں نے کہا, لیکن میرے بھائی, میں واقعی اس کا طالب ہوں. اس نے کہا, ٹھیک ہے, تو پھر تالاب یہاں موجود ہے. میں نے کہا, میں نے بپتسمہ لیا ہوا ہے, لیکن میں نے کہا, جو آپ لوگوں کے پاس ہے وہ مجھے نہیں ملا. میں نے کہا, آپ کے پاس ایک چیز ہے جو میں بھی چاہتا ہوں. اس نے کہا, ٹھیک ہے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. میں اسے دبوچنے کی کوشش کر رہا تھا, کیا آپ سمجھ گئے؟ اور جب میں اس کی روح تک پہنچ گیا, اب یہ دوسرا شخص تھا. اگر میں نے کسی گھٹیا ریاکار سے کبھی گفتگو کی ہے تو یہ ان میں سے ایک تھا. وہ رہ رہا تھا, اس کی بیوی سیاہ بالوں والی عورت تھی, لیکن وہ ایک سنہری بالوں والی عورت کے ساتھ رہ رہا تھا, اور اس میں سے اس کے دو بچے بھی تھے. وہ شراب پیتا, گالیاں بکتا, شراب خانے جاتا اور ہر برا کام کرتا تھا, اور پھر بھی وہاں جاتا, غیر زبانیں بولتا اور نبوت کرتا تھا. تب میں نے کہا, خداوند مجھے معاف کرے, میں گھر چلا گیا. یہ سچ ہے. میں نے کہا, میں صرف اسے پاؤں گا. میں یہ سمجھ نہیں سکتا, یہ رولکس کی برکت اور نزول دکھائی دیتا ہے, لیکن ایک ریاکار پر؟ میں نے کہا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ طے ہے. اس طویل عرصے کے دوران میں مطالعہ کرتا رہا اور روتا رہا. میں سوچتا تھا کہ اگر میں ان کے ساتھ رہتا تو شاید مجھے علم ہو جاتا کہ یہ کیا تھا. ایک تو حقیقی مسیحی تھا, لیکن دوسرا حقیقی ریاکار تھا. پھر میں نے سوچا, یہ کیا تھا؟ میں نے کہا, اے خدا, شاید مجھ ہی میں کوئی غلطی ہے. اور میں نے کہا, ایک بنیاد پرست کی حیثیت سے میں نے سوچا, یہ تمام باتیں بائبل کے اندر ہونی چاہیے, مجھے دیکھنا پڑے گا. ایسا ہی ہے. میرے خیال میں ہر وہ چیز جو کام کر رہی ہے بائبل میں سے نکلنی چاہیے, ورنہ وہ ٹھیک نہیں. اسے بائبل میں سے نکلنا چاہیے, اسے بائبل سے ثابت ہونا چاہیے, لیکن صرف ایک جگہ پر نہیں, پوری بائبل میں موجود ہونا چاہیے. مجھے اس بات پر ایمان رکھنا ہوگا, اسے تمام نوشتوں کے ساتھ مربوط ہونا چاہیے, ورنہ میں اس پر ایمان نہیں رکھ سکتا. اور پالوس نے کہا تھا, اگر کوئی آسمان کا فرشتہ بھی کوئی اور خوشخبری سنائے تو ملعون ہو. بس میں تو بائبل پر ایمان رکھتا ہوں. اور میں نے کہا, میں بائبل کے علاوہ کسی اور بات کو نہیں سمجھ سکتا. دو سال کے بعد میری بیوی کی وفات اور سب کچھ لٹ جانے کے بعد میں گرین مل کے مقام پر تھا. یہ میری دعا کے لیے منتخب جگہ تھی. میں 2-3 دن سے اس غار میں ٹھہرا ہوا تھا. میں تھوڑی دیر کے لیے ہوا میں سانس لینے کے لیے باہر نکلا, اور جب میں باہر آیا تو میں نے اپنی بائبل ایک لکڑی کے سرے پر رکھ دی, اور جس طرح آپ اندر آئے ہیں ایک درخت گرا پڑا تھا جس پر ایک دو شاخہ بھی تھا. درخت نیچے پڑا تھا, اب آپ لیکن دو شاخہ اوپر اٹھا ہوا تھا, درخت نیچے پڑا تھا, اور میں اس لکڑی پر ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھ گیا. میں وہاں رات کو لیٹا آسمان کی طرف دیکھتا رہتا تھا. میرا ہاتھ یوں اٹھا ہوا تھا اور کبھی دعا کرتے ہوئے وہیں سو جاتا تھا. میں بغیر کچھ کھائے پیے کئی دن تک وہاں دعا میں ٹھہرا رہا. میں تھوڑی سی تازہ ہوا لینے کے لیے گھر سے باہر نکلا تھا. اب وہاں ٹھنڈ تھی اور جگہ میں نمی تھی. پس جب میں باہر آیا تو میں نے اپنی بائبل وہاں رکھ دی جہاں گزشتہ روز رکھی تھی, اور اس میں عبرانیوں 6 باب نکل آیا. میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا. آؤ ہم کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں, اور اسی طرح باقی حصہ, کیونکہ جن کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی نعمتوں اور بلاحٹ میں شریک ہو گئے, اور اسی طرح دیگر باتیں. لیکن وہ کہتا ہے, لیکن اگر زمین جاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگائے تو قریب ہے کہ نامقبول, اور اس کا انجام پانی, کیونکہ جو زمین اس بارش کا پانی بار بار پی لیتی ہے, اور اگر جاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگائے تو قریب ہے کہ نامقبول ٹھہرے اور اس کا انجام جلایا جانا ہو. اور کوئی چیز ایسے کرتی ہوئی گزری. میں نے سوچا یہاں کچھ ہے, اب میں سنوں گا. وہ جو بھی ہے جس نے مجھے یہاں اوپر اٹھایا, اب وہ مجھے ایک رویا بخشے گا. اور میں اس لکڑی کے سرے پر بیٹھا انتظار کرتا رہا. میں اٹھا اور ادھر ادھر چلتا رہا. میں پھرتا رہا لیکن کچھ واقع نہ ہوا. میں واپس گھر کے اندر چلا گیا لیکن کچھ بھی نہ ہوا. میں وہاں کھڑا سوچتا رہا, ٹھیک ہے, مگر یہ کیا ہے. میں دوسری بار بائبل کی طرف گیا اور ہو پھر یہی مقام کھلا ہوا تھا. میں نے اسے اٹھایا اور دل میں کہا, یہاں کیا چیز ہے جو خدا چاہتا ہے کہ میں پڑھوں. میں توبہ اور ایمان لانے والے الفاظ سے آگے پڑھتا گیا. پھر میں نے وہ مقام پڑھا جہاں لکھا تھا, کیونکہ جو زمین اس بارش کا پانی پی لیتی ہے جو اس کے اوپر بار بار ہوتی ہے اور اپنے کاشت کرنے والے کے لیے کارآمد سبزی پیدا کرتی ہے, لیکن اگر جاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگائے تو قریب ہے کہ نامقبول ٹھہرے اور اس کا انجام جلائے جانا ہو. اور اس بات نے مجھے ہلا دیا. میں نے دل میں سوچا, خداون اسے سمجھانے کے لیے کیا تو مجھے رویا بخشے گا. میں خداون سے کچھ اور دریافت کرنے کے لیے یہاں دعا میں ٹھہرا ہوا تھا, اور اچانک میں نے اپنے سامنے دنیا کو گردش کرتے ہوئے دیکھا, اور یہ تمام گلائی کی مانند نمایاں تھی. اور پھر سفید پوشاک والا آدمی دیکھا جو اپنا سر اوپر اٹھائے زمین میں بیج بو رہا تھا. جب وہ چلا گیا اور پہاڑی کے پیچھے اوجل ہو گیا تو اس کے جاتے ہی ایک سیاہ لباس والا آ گیا جو اپنا سر جھکائے ہوئے بیج بو رہا تھا. اور جب اچھے بیج اگے تو یہ گندم تھی, لیکن جب برے بیج اگے تو یہ کڑوے دانے تھے. اور پھر زمین پر خشک سالی آ گئی اور گندم کا سر لٹک گیا. وہ قریب المرگ ہو کر پانی کی طلبگار ہوئی, اور میں نے دیکھا سب لوگ ہاتھ بلند کیے ہوئے پانی کے لیے خدا سے دعا مانگ رہے ہیں. اور پھر میں نے گاس پھوس کو بھی دیکھا, سر جھکائے پانی کے لیے فریاد کر رہے تھے. تب بہت سے بادل آئے اور بڑی بارش ہوئی, اور جب بارش ہوئی تو کملائی ہوئی گندم نے فوراً اپنا سر اٹھایا, اور اس کے ساتھ گاس پھوس نے بھی اپنا سر اٹھایا. میں نے دل میں سوچا, ٹھیک ہے, مگر مسئلہ کیا ہے. پھر یہ میری سمجھ میں آ گیا, یہ کھل چکا تھا. جس بارش سے گندم پرورش پاتی ہے اسی سے گاس پھوس بھی پرورش پاتی ہے. اسی طرح جب رول کچھ لوگوں کے کسی گروہ پر نازل ہوتا ہے تو وہ دوسروں کی طرح کسی ریاکار کو بھی برکت دے سکتا ہے. یسوع نے کہا, تم ان کے پھلوں سے انہیں پہچان لوگے, ان کے چلانے یا خوشی منانے سے نہیں, بلکہ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے. میں نے کہا, یہ بات ہے خداوند, میں جان گیا ہوں. میں نے کہا, یہ واقعی سچ ہے, وہ آدمی خدا کی پہچان کے بغیر بھی نعمتوں کا حصول ہو سکتا ہے. بس تب سے میں نے غیر زبانوں پر بڑی تنقید کرنا شروع کر دی. کیا آپ سمجھ گئے ہیں؟ لیکن ایک دن پھر خدا نے اسے مجھ پر ثابت کر دیا. میں اپنے پیغام سے تبدیل ہونے والے ابتدائی لوگوں کو دریائے اوہایو میں بپتسمہ دے رہا تھا. جب میں 17ویں آدمی کو بپتسمہ دینے لگا تو بپتسمہ شروع کرنے سے پہلے میں نے کہا, باپ جب میں اسے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں تو تو اسے پاک روح کا بپتسمہ دینا. میں نے اسے پانی کے نیچے لے جانا شروع کیا, اور اسی وقت آسمان سے روشنی گردش کرتی ہوئی نیچے آئی اور چمکی. ہزاروں لوگ دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے, اور ٹھیک جون کے مہینے میں دوپہر کے 2 بجے کا وقت تھا, اور روشنی عین اس جگہ پر ٹھہر گئی جہاں میں کھڑا تھا. उसमें से ये आवाज आई जिसने कहा, जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पैगाम मसीह की पहली आमद की राह तैयार करने के लिए था, उसी तरह तेरा पैगाम मसीह की दूसरी आमद की राह तैयार करने के लिए होगा। और मैं खौफ से क्रिबुल मर्ग हो गया। और जब मैं वापस गया, किनारे पर शराब बनाने वाले और नशाबाज और हर किस्म के लोग खड़े थे। और उस दोपहर को मैंने 200 या 300 लोगों को बपतिस्मा दिया था। और जब उन्होंने मुझे पानी से खींचा और बाहर निकाला, तो डीकन और बाकी लोग भाग कर आए और मुझसे पूछने लगे और कहने लगे कि उस रोशनी का क्या मतलब था। सिर्फ हम लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम वहाँ था, गिल्ट एज बैप्टिस्ट चर्च वाले और लून स्टार चर्च वाले भी। और जो लोग वहाँ मौजूद थे, जब उन्होंने ये वाकया देखा तो वो चीखने चिल्लाने लगे और बहुत से लोग बेहोश हो गए। मैंने वहाँ एक लड़की को कश्ती से निकालने की कोशिश की जो तराकी का लबास पहने हुए थी। वो एक कलीसिया में संडे स्कूल की टीचर थी। मैंने कहा, मौर्जी, क्या आप बाहर नहीं चली जाती? उसने कहा, बिली, मुझे बाहर निकालने की जरूरत नहीं। मैंने कहा, ये ठीक है, आपको जरूरत नहीं, लेकिन जहाँ मैं बपतिस्मा दूंगा उस जगह को मैं बहुत इज्जत देना चाहता हूँ। उसने कहा, मुझे तो कोई जरूरत नहीं। मेरे बपतिस्मे देने पर जब वो वहाँ बैठी हंस रही थी, क्योंकि वो बपतिस्मे पर ईमान नहीं रखती थी, लेकिन जब खुदावंद का फरिश्ता नीचे आया तो वो कश्ती के अंदर मुँह के बल गिर गयी। आज वो लड़की पागल हो चुकी है। बस आप खुदा का मजाक नहीं उड़ा सकते। देखें, अब इसके बाद एक खूबसूरत लड़की बाद में वहाँ शराब पीने लगी तो वहाँ एक बोतल से टकराकर गिर गई और उसका सारा चेहरा कट गया। ओ, और उसकी शक्ल खौफनाक हो गई। ये वाकया उसी जगह हुआ। और फिर सारी जिंदगी मैं उसे गर्दिश करते देखता रहा हूँ, उसे मुतहरिक देखता रहा हूँ और रोयाएं देखता रहा हूँ कि ये बातें किस तरह पूरी होती हैं। तब उसके थोड़े अरसे बाद ये बोझ बनने लगा और हर शख्स मुझसे कहने लगा ये गलत है। और मैं अपनी उस पुरानी जगह पर गया जहां मैं हमेशा दुआ करने के लिए जाता था। और मैंने कहा, जितनी भी दुआ की कि मेरी तरफ ना आए, वो फिर भी मेरी तरफ आता गया। और इस तरह मैं था, मैं इंडियाना की रियासत में खेलों का उस्ताद था। मैं घर आया तो एक भाई मेरा इंतजार कर रहा था जो हमारे गिरजाघर में पियानो बजाता था। उसने कहा, बिली, क्या आप आज दोपहर मेरे साथ मेडिसिन चलेंगे? मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पौधे लगाने के लिए जाना है। और मैं अभी घर आया ही था और बंदूक की बेल्ट और दीगर चीजें उतार कर रस्तीने लपेट रहा था। और हम दो कमरों के छोटे से घर में रहते थे। और मैं दोपहर के खाने के लिए मुँह हाथ धोने के लिए तैयारी कर रहा था। और जब मैंने हाथ मुँह धो लिए थे, जैसे ही घर के चौगिर्द मैपल के एक दरख्त के नीचे से गुजर रहा था और अचानक कोई चीज ऐसे करते हुए गुजरी, मैं तकरीबन बेदम सा हो गया। और मैंने निगाह की तो मैं जान गया कि ये वही चीज थी। मैं वहीं बैठ गया और वो बाई कार से छलांग लगाकर मेरे पास भागा आया और कहने लगा, बिली, क्या आप बहुत थके हुए हैं? मैंने कहा, नहीं जनाब। उसने कहा, क्या मसला है, बिली? और मैंने कहा, मैं नहीं जानता। मैंने कहा, भाई, आप बेशक चले जाएं, सब ठीक है, शुक्रिया। मेरी बीवी पानी का एक गड़ा लिए हुए आ रही थी और उसने पूछा, प्यारे, क्या मसला है? मैंने कहा, कुछ नहीं मेरी जान। उसने कहा, तो फिर आइए, खाना तैयार है। और उसने मुझे हौसला देने के लिए अपना बाजू मेरे ऊपर रख दिया। मैंने कहा, प्यारी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने कहा, उन्हें बुलाकर कहो आज सुपहर मैं बाहर नहीं जाऊँगा। मैंने कहा, प्यारी मेडा, मैंने फिर कहा, मैं जानता हूँ, मैं अपने पूरे दिल से यीशु मसीह से मोहब्बत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि शैतान मेरे साथ कोई काम करे। मैंने कहा, मैं इस तरह नहीं जा सकता क्योंकि मैं एक कैदी हूँ। मैंने कहा, हमेशा जब भी ये चीजें वाकया होती हैं, बिल्कुल इस तरह, और रोयाएं इस तरह आती हैं, या ये जो कुछ भी हो, मैं कहता हूँ ये मुझ पर वाकई होती हैं। मैं नहीं जानता ये एक रोया थी, मैं इसे रोया नहीं कह सकता। मैंने कहा, ये मुझे होश से बेगाना कर देता है। मैंने कहा, मैं नहीं जानता ये क्या है। और प्यारी, मैं इसे बेवकूफी के साथ नहीं लेना चाहता। वो लोग कहते हैं ये शैतान की तरफ से है, लेकिन मैं खुदावंद यीशु से मोहब्बत करता हूँ। ओ, उसने कहा, बिली, आपको लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। मैंने कहा, लेकिन प्यारी, जरा दूसरे मुबल्लिगों को तो देखो। मैंने कहा, मैं इसकी ख्वाहिश नहीं करता। मैंने कहा, मैं जंगल में अपने मकाम पर जा रहा हूँ, मेरे पास $15 हैं। तुम बिली का ख्याल रखना। बिली उस वक्त बहुत छोटा बच्चा था, बहुत छोटा बच्चा। और मैंने कहा, तुम ये ले लो, ये कुछ अरसे के लिए तुम्हारे और बिली के लिए काफी रकम है। उन्हें बुलाकर कहना मैं कल तक वापस आ जाऊंगा और शायद फिर कभी भी वापस ना आऊं। अगर मैं 5 दिन तक वापस ना आऊं, तो वो मेरी जगह और आदमी का बंदोबस्त कर लें। और मैंने कहा, मेडा, मैं उस वक्त तक जंगल से बाहर नहीं आऊंगा जब तक खुदा मुझसे वादा ना करे कि ये चीज मुझसे दूर रहेगी और मेरे पास फिर कभी ना आएगी। ख्याल करें कि इंसान के अंदर कितनी जहालत होती है। और उस रात मैं ऊपर चला गया, मैं कोठरी तक पहुंचा। दूसरा दिन आ गया था, बहुत देर हो गई थी। अगले दिन मुझे पहाड़ी के पार अपने कैंप में जाना था, ऊपर पहाड़ों के चौगिर्द या उस पहाड़ी के चौगिर्द, बल्कि जंगल में दाखिल होना था। और मुझे यकीन था कि FBI वाले भी वहाँ से मुझे तलाश नहीं कर सकते थे। बस वो छोटी सी पुरानी सी कोठड़ी थी, और मैं सारी दोपहर दुआ करता रहा इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। दुआ के बाद बाइबल में से ये हवाला मेरे सामने आया, जहाँ लिखा हुआ था कि नबियों की रूहें नबियों के ताबे हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। उस कोठड़ी में बहुत अंधेरा हो गया था। मैं यहाँ लड़कपन में आया करता था। मैं वहाँ क्याम करके रात भर मछलियाँ पकड़ा करता था। वो तबाह हाल कोठड़ी कई सालों से वहाँ मौजूद थी। इस हाल को पहुँचने से पहले ये गालबन जंगल के किसी मुहाफ़िज़ के इस्तेमाल में थी। और बस मैं वहाँ इंतजार में पड़ा रहा। और मैंने दिल में सोचा, ठीक है, रात का 1 बज गया, 2, और फिर सुबह के 3 बज गए। और मैं फर्श पर चल रहा था और इधर उधर फिरता रहा। मैं वहाँ एक छोटे स्टूल पर बैठ गया। ये स्टूल नहीं बल्कि एक डब्बा सा था। मैं वहाँ बैठ गया और मैंने दिल में कहा, ऐ खुदा, तू क्यों मेरे साथ इस तरह करता है। मैंने कहा, बाप, तू जानता है मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तुझे मालूम है मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि शैतान के कब्जे में रहूं। मैं नहीं चाहता ये बातें मुझ पर वाकया हों। खुदा, मेहरबानी फरमा कि आइंदा को ये मेरे साथ ना हो। मैंने कहा, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं जहन्नम में नहीं जाना चाहता। अगर मैं गलती पर हूँ तो मेरी सारी मुनादी और कोशिश और तमाम मेहनत मशक्कत का क्या फायदा। और सिर्फ मैं ही जहन्नम में नहीं जा रहा, बल्कि दूसरे हजारों लोगों की भी गलत रहनुमाई कर रहा हूँ। यहाँ उन दिनों में सैकड़ों लोग थे। और मैंने कहा, मेरे पास बहुत बड़ी खिदमत है। मैंने कहा, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ ये हो। मैं उस छोटे से डब्बे पर बैठ गया और मैं वहाँ कुछ इस हालत में बैठा हुआ था, बिल्कुल इस तरह बैठा हुआ था। और अचानक मैंने कोठरी में रोशनी टिमटिमाती महसूस की। मैं समझा कि कोई शख्स रोशनी लिए इधर आ रहा है। मैंने इर्द गिर्द देखा और सोचा, सब ठीक लगता है। और वो फिर आ गया था और ऐन मेरे सामने था। फर्श के पुराने लकड़ी के तख्ते दिखाई देने लगे और ये ऐन मेरे सामने मौजूद था। कोने में एक ड्रम वाला चूल्हा पड़ा था, जिसका बलाई ढकना उतारा गया था, और फर्श पर एक रोशनी पड़ रही थी। मैंने सोचा, ठीक है, मगर वो कहाँ है? अच्छा है, लेकिन ये ऐसे नहीं आ सकती। मैंने इर्द गिर्द देखा और वही रोशनी मेरे ऊपर मौजूद थी। यही रोशनी एन मेरे ऊपर मौजूद थी, मेरे ऊपर ठहरी हुई थी। ये जर्दी माइल सब्ज रंग की आग थी जो मेरे सर के ऊपर करती गर्दिश कर रही थी, बिल्कुल इस तरह। मैंने उसकी तरफ देखा और सोचा, ये क्या है? अब उसने मुझे खौफजदा कर दिया था। और मुझे किसी शख्स के कदमों की छाप सुनाई देने लगी। कोई नंगे पांव चला आ रहा था। और मैंने एक आदमी के पांव को अंदर आते देखा। और कमरे के अंदर तारीकी थी, लेकिन जिस जगह वो मौजूद था वहाँ रोशनी चमक रही थी। मैंने एक आदमी के पांव को अंदर आते देखा, और जब वो कमरे में चला आया तो मैंने देखा कि वो आदमी तकरीबन 200 पाउंड वजन का मालिक था। वो अपने हाथ यूं मोड़े हुए था। अब मैंने उसे बगोले में देखा था। मैंने उसे अपने साथ बातें करते सुना था। उसे रोशनी की सूरत में देखा था, लेकिन उसकी सूरत पहली बार मेरे सामने आई थी। वो मेरे बहुत ही करीब चला आया था। ठीक है मेरे ईमानदार दोस्तों, मैंने ख्याल किया कि मेरा दिल अभी रुक जाएगा। मैं जरा तसव्वुर करें, जरा खुद को उस जगह पर रख कर सोचें, आप भी ऐसा ही महसूस करेंगे। शायद आप मुझसे भी ज्यादा सफर कर चुके हैं। हो सकता है आप मुझसे भी पुराने मसीही हों, लेकिन इससे आप भी इस तरह महसूस करेंगे, क्योंकि वो सैकड़ों बार मेरे पास आ चुका था, लेकिन जब वो यूं करीब आया तो मैं मफलूज होकर रह गया। बाज़ औक़ात उसकी मौजूदगी मुझे इतना कमजोर कर देती है। जब मैं प्लेटफॉर्म से उतरता हूँ तो बेजान सा हो जाता हूँ। बहुत दफा ऐसा हुआ है, जब मैं ज्यादा देर खड़ा रहता हूँ तो मैं थक जाता हूँ, और ये कई कई घंटे मुझ पर छाया रहता है, यहाँ तक कि मुझे इसका इल्म भी नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ। اور میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا. بائبل پڑھ کر دیکھیں اور یہ اس کی وضاحت کرے گی کہ یہ کیا ہے. کتاب مقدس یوں بیان کرتی ہے. میں وہاں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا. میں نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا رکھا تھا اور وہ بڑے خوشگوار انداز میں میری طرف دیکھ رہا تھا, لیکن اس کی آواز بہت گہری تھی اور اس نے کہا, خوف نہ کر, مجھے قادر مطلق خدا کی حضوری سے بھیجا گیا ہے. اور جب وہ بولا تو یہ وہی آواز تھی, بالکل وہی آواز جو مجھ سے 2 سال کی عمر سے لے کر اب تک مخاطب ہوتی آئی. میں جان گیا کہ یہ وہی تھا اور میں نے دل میں سوچا, اب اور اسے سنیے, اب اس گفتگو کو غور سے سنیے, جہاں تک ہو سکے میں اسے لفظ با لفظ دہراؤں گا اپنی یاد دہانی کے مطابق, کیونکہ یہ مجھے پوری یاد ہے. وہ, میں نے کہا, میں نے اس کی طرف دیکھا. اس نے کہا, خوف نہ کر, اس نے مطمئن انداز میں کہا اور پھر بولا, میں قادر مطلق خدا کی حضوری سے بھیجا گیا ہوں تاکہ تجھے بتاؤں کہ تیری خاص پیدائش ہے اور آپ میری پیدائش کے واقعہ سے آگاہ ہیں. جب میں پیدا ہوا تو یہی روشنی میرے اوپر آ کر ٹھہر گئی. بس اس نے کہا, تیری خاص پیدائش اور ناقابل فہم زندگی اس بات کی نشاندہی ہے. تو تمام دنیا میں جائے گا اور بیماروں کے لیے دعا کرے گا. اور اس نے مزید کہا, خواہ ان کو جو کچھ بھی ہو. اور اس نے اس طرح کہا, خدا میرا منصف ہے, خدا جانتا ہے. کینسر کا نام لیا تھا. اور اس نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, اگر لوگ تجھ پر یقین رکھیں گے اور تیری دعا کے دوران مخلص رہیں گے تو تیری دعاؤں کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہ سکے گی, حتیٰ کہ کینسر بھی نہیں. دیکھیں, بشرطے کہ لوگ تیرا یقین رکھیں. اور میں نے دیکھا کہ وہ میرا دشمن نہیں تھا بلکہ وہ میرا دوست تھا. اور میں نہیں جانتا تھا کہ جب وہ میری طرف آ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گا یا میرے ساتھ کیا ہوگا. میں نے کہا, بہتر ہے جناب. میں نے کہا, میں شفا اور دوسری نعمتوں کے بارے میں کیا جانتا تھا. میں نے کہا, بہتر ہے جناب, میں ایک غریب آدمی ہوں. اور میں نے کہا, میں اپنے لوگوں کے درمیان رہتا ہوں اور میں جن لوگوں میں رہتا ہوں وہ بہت غریب ہیں اور میں غیر تعلیم یافتہ ہوں. اور میں نے کہا, اور میں اس قابل نہیں ہو سکوں گا. وہ لوگ میری بات نہیں سمجھیں گے. میں نے کہا, وہ لوگ میری نہیں سنیں گے. اس نے کہا, جس طرح موسیٰ نبی کے لیے 2 نشان دیے گئے تھے تاکہ اس کی خدمت کی تصدیق ہو, اسی طرح تیری خدمت کی تصدیق کے لیے بھی تجھے بھی دو نشان دیے جائیں گے. اس نے کہا, ان میں سے ایک یہ ہوگا, جب کوئی شخص دعا کروانے کے لیے تیرے سامنے آئے تو تو اپنے بائیں ہاتھ سے اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لینا اور کہا, ذرا خاموش رہنا. ایسا ہوگا اگر تیرے بدن میں طبعی اثر مرتب ہو. اور کہا, تو پھر تو اس کے لیے دعا کرنا اور جب وہ کیفیت تجھ سے غائب ہو جائے تو تو سمجھ لینا کہ بیماری نے اس شخص کو چھوڑ دیا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو تو اس آدمی کو برکت دے کر رخصت کر دینا. ٹھیک ہے. میں نے کہا, جناب, مجھے ڈر ہے کہ لوگ مجھے قبول نہیں کریں گے. اس نے کہا, اگلی بات یہ ہوگی کہ اگر وہ اس پر نہ سنیں تو پھر اس دوسری کو سنیں گے. اس نے کہا, تب یوں ہوگا کہ تجھے ان کے دلوں کے خفیہ بید معلوم ہو جائیں گے. اس نے کہا, تب وہ تیری سنیں گے. ٹھیک ہے. میں نے کہا, جناب, میں آج رات اس لیے ٹھہرا ہوا ہوں, جو باتیں میری طرف آتی ہیں مذہبی لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہیں. اس نے کہا, تجھے دنیا میں اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. دیکھیں, نعمتیں اور بلاہٹ بے تبدیل ہے. اس نے کہا, تجھے دنیا میں اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا. اور میں نے کہا, ٹھیک ہے جناب. میں نے کہا, چونکہ مذہبی لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ بری روح کی طرف سے ہے. اور میں نے کہا, وہ اس لیے آج رات میں یہاں دعا کر رہا ہوں. اور یہاں وہ بات ہے جو اس نے میرے ساتھ منسوب کی. اور اس نے مجھے پہلی بار خداوند یسوع کی آمد کے ساتھ منسوب کیا. اور میں نے کہا, عزیزو, یہ عجیب بات تھی. ٹھیک ہے, میں ذرا تھوڑی دیر رک کر ذرا ماضی میں جاؤں گا. جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ خوف زدہ کیا وہ یہ ہے کہ جب بھی میں کسی نجومی کے سامنے جاتا تھا تو وہ پہچان لیتا تھا کہ کیا واقعہ ہوا ہے. اور یہ اس طرح ہوتا تھا کہ جیسے میری جان نکل گئی. مثال کے طور پر, میں اور میرا کزن ایک روز ایک تفریح کے میدان میں سے گزر رہے تھے, جبکہ ہم ابھی بچے ہی تھے. وہاں سے گزر رہے تھے, وہاں کچھ خیمے لگے ہوئے تھے اور جن میں سے ایک کے اندر ایک نوجوان نجومی خاتون بیٹھی ہوئی تھی. वो बहुत अच्छी दिखाई देती थी। वो वहाँ बैठी हुई थी, हम सब वहाँ से गुजर रहे थे। उसने कहा, सुनो तुम जरा मेरे पास आओ। हम तीनों लड़के उसके पास चले गए और उसने कहा, तुम जो खुली स्वेटर पहने हुए हो वो मैं था। मैंने कहा, जी मैडम। मेरा ख्याल था कि शायद वो मुझे कोक की बोतल या कोई और चीज लेने के लिए भेजना चाहती है। वो एक नौजवान औरत थी जिसकी उम्र 20 साल से कुछ ज्यादा थी, वहाँ बैठी हुई थी। मैं उसके करीब गया और कहा, जी मैडम, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? और उसने कहा, सुनो क्या तुम जानते हो तुम्हारे पीछे एक रोशनी चलती है? तुम एक खास निशान के तहत पैदा हुए हो। मैंने कहा, आपका क्या मतलब है? उसने कहा, ठीक, तुम एक निशान के तहत पैदा हुए हो। ये एक रोशनी तुम्हारे पीछे पीछे चलती है, तुम इलाही बलाहट के लिए पैदा हुए हो। मैंने कहा, ऐ औरत मुझसे दूर हो। मैं वहाँ से चलता बना क्योंकि मेरी वालदा हमेशा कहा करती थी कि ये बातें अबलीस की तरफ से होती हैं। मेरी वालदा बिल्कुल दुरुस्त कहा करती थी। बस मैं इससे खौफजदा हो गया। और जब मैं खेलों का नगरान था, तब एक दिन मैं बस पर सफर कर रहा था। मैं बस में सवार हुआ और मैं हमेशा खुद को रूहों के नरगे में महसूस करता था। मैं वहाँ खड़ा था और मेरे पीछे एक जहाजदान खड़ा था। मैं दौरे पर जा रहा था। मैं उस बस के जरिए हेनरी वेल के जंगलात की तरफ जा रहा था। मुझे कुछ अजीब सी कैफियत का एहसास हुआ। मैंने इर्द गिर्द देखा और एक कीमती लिबास वाली बहुत बारी वजूद वाली खतून बैठी हुई नजर आई। उसने कहा, आप कैसे हैं? फिर कहा, आप कैसे हैं? मैंने उसे आम औरत समझा, आप जानते हैं, जिसने मुझसे गुफ्तगू करनी चाहिए। इसलिए मैंने, बल्कि उसने कहा, मैं आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूंगी। मैंने कहा, जी मैडम, और मैंने उसकी तरफ रुख किया। उसने कहा, क्या आपको इल्म है कि आपकी पैदाइश एक निशान के तहत हुई है? मैंने सोचा, ये भी उन मजाका खेज औरतों में से एक है, इसलिए मैं बाहर की तरफ देखने लगा। मैंने कोई और लफ्ज अदा ना किया, सिर्फ बाहर निगाह रखी। उसने कहा, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बात कर सकती हूँ? लेकिन मैं बाहर। उसने कहा, ऐसा रवैया इख्तियार ना करें। मैं आगे देख रहा था। मैंने सोचा, ये तहजीब वाली बात नहीं है। उसने कहा, थोड़ी सी गुफ्तगू आपके साथ करना चाहती हूँ। मैंने निगाह आगे रखी और उसकी तरफ तवज्जो ना दी। बराह रास्त मैंने सोचा, मुझे यकीन है कि ये भी दूसरों की तरह यही कहेगी। मैंने कुछ सोच कर रुख बदला। वो मेरे खुदाया, मैं लर्ज गया, मैं जान गया, क्योंकि ये सोचना पसंद ही नहीं करता था। और मैंने रुख बदल लिया। उसने कहा, शायद अच्छा होगा कि पहले मैं अपना तारुफ करा दूं। उसने कहा, मैं माहिर फलकियात हूं। मैंने कहा, मेरा भी यही ख्याल था कि आप कोई ऐसी चीज हैं। उसने कहा, मैं अपने बेटे से मिलने शिकागो जा रही हूं, जो वहां बैप्टिस्ट खादम है। मैंने कहा, जी मैडम। उसने कहा, क्या किसी ने आपको बताया है कि आपकी पैदाइश एक निशान के तहत हुई है? मैंने कहा, नहीं मैडम, मैंने उससे झूठ बोला था, समझे? और मैंने ऐसा कहा, मैं ये देखना चाहता था कि वो अब क्या कहती है। उसने कहा, मैंने कहा, नहीं मैडम। उसने कहा, क्या खादमों ने भी कभी आपको नहीं बताया? मैंने कहा, मेरा खादमों के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। और उसने कहा, और मैंने कहा, उसने मुझसे कहा, मैंने कहा, ठीक है। उसने कहा, अगर मैं आपको आपकी तारीख पैदाइश बता दूं, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? मैंने कहा, नहीं मैडम। और उसने कहा, ठीक है, मैं बता सकती हूँ कि आप कब पैदा हुए थे। मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं है। और उसने कहा, आप 6 अप्रैल 1909 में सुबह 5 बजे पैदा हुए थे। मैंने कहा, ये सच है। मैंने कहा, आपको कैसे ये इल्म हुआ? मैंने कहा, इस जहाजदान को बताइए कि ये कब पैदा हुआ था। उसने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और मैंने कहा, क्यों? आपको ये क्यों कर मालूम नहीं हुआ? उसने कहा, देखें जनाब। उसने कहा, जब उसने बातचीत शुरू की तो ये फल्कियात के मुतल्लिक थी। और उसने कहा, हर इतने 100 साल के बाद, उसने कहा, क्या आपको मालूम है कि सुबह का सितारा कब नमूदार हुआ था, जिसने यीशु मसीह तक लाने में मजूसियों की रहनुमाई की? मैंने ये बात दिल ही में रोक ली। आप जानते हैं, मैंने कहा, ठीक है, मगर मैं मजहब के बारे में कुछ नहीं जानता। और उसने कहा, ठीक है, आपने मजूसियों के बारे में सुना है जो यीशु को देखने आए थे? मैंने कहा, जी हाँ। और उसने कहा, ठीक है, तो वो मजूसी कौन थे? ओ, मैंने कहा, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि वो मजूसी थे। उसने कहा, ठीक है, मजूसी क्या होता है? उसने कहा, वही कुछ जो मैं हूँ, यानी माहिर फलकियात, उन्हें सितारों की तहकीक करने वाला कहा जाता है। फिर उसने कहा, क्या आपको मालूम है कि जमीन पर कोई काम करने से पहले खुदा आसमान पर इसका ऐलान करता है और फिर इसे जमीन पर करता है? मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं। और उसने कहा, ठीक है, उसने 2 या 3 सियारों के नाम लिए थे, जैसे मरीख, मुश्तरी और जोहरा, शायद ये नाम ना हो। लेकिन उसने कहा वो अपने रास्तों पर चलते हुए इकट्ठे हो जाते हैं और बताते हैं। उसने कहा तीन मजूसी यीशु से मिलने के लिए आए थे, उनमें से एक हाम की नस्ल से और दूसरा सिम की नस्ल से और तीसरा याफ्त की नस्ल से था। और उसने कहा जब वो बैतलहम में इकट्ठे हुए तो तीन सितारे जो उनसे ताल्लुक रखते थे, हर एक शख्स जो जमीन पर है, उसने मजीद कहा उनका सितारों के साथ कोई ना कोई ताल्लुक होता है। उसने कहा उस जहाजदान से पूछ लें, जब चांद गुजर जाता है और आसमान का स्यारा गुजर जाता है तो मध्य जजर की लहर उसके साथ नहीं जाती और वापिस आ जाती है। मैंने कहा ये मुझे भी मालूम है, इसलिए पूछने की जरूरत नहीं। तब उसने कहा ठीक है, आपकी पैदाइश भी आसमान पर सितारों के साथ ताल्लुक रखती है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये मुझे मालूम नहीं। और उसने कहा अब तीन मजूसी आए थे, और उसने कहा जब वो तीनों सितारे, बल्कि वो लोग जो मुख्तलिफ सिमतों से आ रहे थे, जब वो बैतलहम में इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कहा हमने इसे पा लिया और आपस में मशवरा किया। एक मजूसी हाम की नस्ल से और दूसरा सिम की नस्ल से और तीसरा याफ्त की नस्ल से था, जो तीनों ही नूह के बेटे थे। और उसने कहा उन्होंने आकर खुदावन यीशु मसीह को सिजदा किया। और उसने कहा वहाँ से जाने से पहले उसने फिर कहा उन्होंने अपने नजराने उसके आगे पेश किए। और उसने कहा यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के दौरान कहा था जब अंजील की मुनादी तमाम दुनिया हाम सिम और याफ्त के लोगों में हो चुकेगी तो फिर वो वापिस आएगा। और उसने कहा अब जब ये आसमानी सियारे गर्दिश करते जा रहे थे तो उसने फिर कहा तो वो एक दूसरे से जुदा हो गए, अब तक वो दोबारा जमीन पर इकट्ठे होते हुए नहीं देखे गए, लेकिन कहा हर इतने 100 सालों के बाद वो एक जगह इकट्ठे होते हैं। अगर वहाँ कोई माहिर फलकियात होता तो वो उसकी बात को समझ जाता जो वो बता रही थी, लेकिन मेरी समझ में ना आया जो उसने बताया था। उसने कहा वो इस तरह बाहम इकट्ठे हो जाते हैं। उसने ये भी कहा नस्ल इंसानी को जो सबसे बड़ा यादगार तोहफा मिला उस वक्त मिला जब खुदा ने अपना बेटा दिया। जब ये सियारे फिर दोबारा आपस में मिलते हैं तो उसने फिर कहा तो खुदा एक और तोहफा दुनिया को देता है। उसने कहा आपकी पैदाइश भी सितारों के इकट्ठे होने के वक्त हुई थी। और उसने कहा और मैंने इस सबब की बिना पर मालूम कर लिया है। ठीक है, तब मैंने कहा खातून पहली बात तो ये है कि मैं ऐसी बातों का यकीन नहीं करता, मैं मजहबी आदमी नहीं हूँ और ना ही मैं इस सिलसिले में मजीद कुछ सुनना चाहता हूँ, और मैं आगे बढ़ गया, इसलिए मैंने उस सिलसिला को मुनकता कर दिया। तब मैं बाहर निकल आया और जब कभी भी किसी नजूमी या माहिर फलकियात के पास से मैं गुजरता हूँ तो ऐसा ही होता है। मैंने दिल में सोचा ये शयातीन इस तरह क्यों करते हैं, जबकि मुबल्लिग हजरात कहते हैं ये शैतान है, ये शैतान है, वो मेरे मुतल्लिक यही यकीन करते हैं। और तब उस रात जब मैं वहाँ, जब फरिश्ते ने यही हवाला दिया तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ठीक है मगर ऐसा क्यों है कि ये तमाम बदरू गिरफ्तार लोग हमेशा मुझे यही बात बताते हैं और मजहबी लोग जो मेरे भाई हैं वो कहते हैं ये बुरी रूह की तरफ से है। अब गौर से सुनिए कि उसने जो कि उस तस्वीर पर मुंडलाता नजर आता है क्या कहा। उसने कहा जैसा उस वक्त हुआ था वैसा ही अब है। और उसने हवाले देने शुरू किए, जब हमारे खुदावन यीशु मसीह की खिदमत का आगाज हुआ तो खादमों ने कहा कि ये बाल जबूब यानी शैतान है, लेकिन बदरूहें कहती थी कि वो खुदा का बेटा है, इसराइल का कदूस है। बदरूहें पालूस और बरनाबास को देखें जब वो वहाँ मनादी कर रहे थे। खादमों ने कहा उन आदमियों ने दुनिया का तहबाला कर दिया है, ये बुरे आदमी है, ये शैतान है। लेकिन वहाँ गैबीन लड़की थी, उसने पहचान लिया कि पालूस और बरनाबास खुदा के बंदे हैं और उसने कहा ये खुदा ताला के बंदे हैं जो निजात की राह दिखाते हैं। क्या ये दुरुस्त है? लेकिन सफली अलूम वाले और पेशगोई करने वाले बदरू गिरफ्तार लोग हैं, लेकिन हम इस नजरिया इल्मे इलाहियात में इतने उतर चुके हैं कि हमें रूल कुछ के मुतल्लिक कुछ पता ही नहीं चलता। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात के बाद भी आप मुझसे मोहब्बत करेंगे, लेकिन बात यही है, मेरा इशारा पेंतिकोस्टलों की तरफ भी है। ये सच है, सिर्फ चीखने चिलाने और नाचने का ये मतलब नहीं कि आप रूल कुछ के मुतालिक कुछ जानते हैं, ये जाती मामला है और रूबरू ताल्लुक है जिसकी आपको जरूरत है। खुदा इसी तरह की कलीसिया खड़ी करने को जा रहा है। ये सच है, जब वो रूह में इत्तेहाद और कुव्वत में मिलकर एक हो जाएं। और फरिश्ते ने इसका हवाला दिया, उसने मुझे बताया कि खादमों ने इसे क्यों कर गलत समझा, और उसने मुझे यकीन दिलाया कि खिदमत को खादमों ने क्यों गलत तौर पर समझा। और जब उसने मुझे इसके मुतालिक सब कुछ बताया اور یہ کہ یسوع کے ساتھ کس طرح ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے, اور یہ واقعات جو مجھ پر گزرتے ہیں ان کے متعلق کیا ہے؟ اور آپ دیکھیں, اس نے کہا یہ بڑھتے اور بڑے سے بڑے ہوتے جائیں گے. اور اس نے مجھے حوالہ دے کر بتایا کہ یسوع کس طرح اسے کرتا تھا. جب وہ آیا تو اس کے پاس کیسی قدرت تھی جس سے وہ باتیں معلوم کر لیتا تھا, اور کنویں پر عورت کو بتا دیا. اس نے شافی ہونے کا دعویٰ نہ کیا بلکہ کہا جس طرح باپ مجھے دکھاتا ہے میں اسی طرح کرتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن وہ کس قسم کی روح تھی؟ اس نے کہا یہ رول کچھ تھا. پھر میرے اندر کچھ ہوا, وہ یہ کہ میں نے محسوس کیا کہ جس چیز سے میں نے منہ موڑا اسی کے لیے تو خدا نے مجھے بھیجا ہے. میں نے محسوس کیا کہ گزشتہ زمانہ میں جس طرح فریسیوں نے کیا تھا, اسی طرح موجودہ لوگوں نے میرے لیے کلام کی غلط تفسیر کی ہے. تب سے لے کر جو رول کچھ مجھے کہتا ہے, میں نے خود اس کی تفسیر کی ہے. میں نے فرشتے سے کہا میں جاؤں گا, فرشتے نے کہا میں تیرے ساتھ رہوں گا, اور فرشتہ پھر اس روشنی میں داخل ہو گیا جو چکر پر چکر اور چکر پر چکر چکر کھائے جا رہی تھی. اس کے پاؤں روشنی کے اندر اوپر چلے گئے اور وہ اس کمرے سے غائب ہو گیا, اور میں ایک نیا شخص بن کر گھر آ گیا. جب میں کلیسیا میں گیا تو لوگوں کو اس کے متعلق بتایا, اور یہ اتوار کی رات تھی. اور بدھ کی رات لوگ میو کی ایک نرس کو لائے جو کینسر کے باعث مر رہی تھی, اور اس کا سارا بدن سیاہ پڑ چکا تھا. جب میں اس کے قریب گیا تو مجھے ایک رویا نظر آئی. میں نے اس کو پھر نرس کا کام کرتے ہوئے دیکھا. لوئس ویل میں اس کا نام کئی برسوں سے مردہ لوگوں کی فہرست میں تھا. وہ آج کل جیفرسن ویل میں ہے اور کئی برسوں سے نرس کا کام کر رہی ہے, کیونکہ جب میں نے اس پر نگاہ کی تو مجھے وہ رویا نظر آئی. میں اس کی طرف مڑا, مجھے معلوم بھی نہ تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. وہاں کھڑے ہوئے جب وہ اس پہلے کیس کو لائے اور عورت کو لٹا دیا تو میں لرز گیا. وہ وہاں پڑی تھی جبکہ نرسیں وغیرہ اس کے ارد گرد کھڑی تھی. اس کا چہرہ بالکل اندر دھنس گیا تھا اور آنکھیں بھی دھنس گئی تھی. اس کا نام مارجی مورگن ہے. آپ اسے خط لکھنا چاہیں تو اس کا پتہ 411 نابلوچ ایونیو جیفرسن ویل انڈیانا ہے. آپ کلارک کاؤنٹی اسپتال جیفرسن ویل انڈیانا کے پتے پر بھی لکھ سکتے ہیں, وہ آپ کو اپنی گواہی بتائے گی. میں نے نیچے نگاہ ڈالی, یہ میرے لیے پہلا کیس تھا. میں اسے دیکھنے گیا تو رویا ظاہر ہوئی. میں نے اس عورت کو مضبوطی اور صحت میں دوبارہ نرس کا کام کرتے اور چلتے پھرتے دیکھا. میں نے کہا خداون فرماتا ہے کہ آپ نہیں مریں گی بلکہ زندہ رہیں گی. اس کا شوہر دنیاوی طور پر اعلیٰ مرتبہ پر تھا, وہ میری طرف دیکھ رہا تھا. میں نے کہا جناب آپ خوف نہ کریں, آپ کی بیوی زندہ رہے گی. وہ مجھے باہر بلا کر لے گیا اور کہا, اور دو تین ڈاکٹروں کو بلا کر کہا, کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. اس لیے میں نے بلایا. اس نے کہا میں ان کے ساتھ گولف کھیلتا ہوں. اس نے پھر کہا میری بیوی کی انتڑیوں پر کینسر لپٹ چکا ہے, حتیٰ کہ انما سے بھی اسے نہیں دویا جا سکتا. میں نے کہا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ اسے کیا ہوا ہے. یہاں ایک چیز اتری ہے اور میں نے رویا دیکھی ہے, اور جس شخص نے مجھے بتایا تھا اس نے کہا تھا کہ جو کچھ میں دیکھوں بیان کر دوں اور یہ ویسا ہی ہوگا, اور اس نے مجھے کہا تھا اور میں اس پر یقین رکھتا ہوں. خدا کی تمجید ہو, اس کے چند دنوں بعد وہ چلنے پھرنے اور دلائی کا کام کرنے لگی. اب وہ پوری صحت مند ہو چکی ہے اور اس کا وزن 165 پاؤنڈ ہے. جب میں نے اسے قبول کر لیا تھا تو وہ غائب ہو گیا تھا. تب رابرٹ ڈارٹی نے مجھے فون کیا اور یہ خبر ٹیکساس سے ہو کر پوری دنیا میں پھیل گئی, اور ایک رات تقریباً 4-5 مرتبہ ایسا ہوا. میں سمجھ نہ سکا کیونکہ میں غیر زبانیں بول رہا تھا. میں رول کس کے بپتسمہ پر ایمان رکھتا ہوں. میرا ایمان ہے کہ لوگ غیر زبانیں بول سکتے ہیں. اور ایک رات جب میں سان اینٹن ٹیکساس کے ایک بڑے گرجے میں تھا اور میں چلا آ رہا تھا, وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے کسی بندوق کی فائر کی طرح غیر زبانیں بولنا شروع کر دی, بلکہ مشین گن کی گولیوں کی طرح دڑا دڑ. پیچھے, بہت پیچھے, ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا خداوند یوں فرماتا ہے, جو شخص پلیٹ فارم کی طرف جا رہا ہے وہ ایک خدمت کے ساتھ جا رہا ہے جو اسے قادر مطلق خدا کی طرف سے ملی ہے. اور جس طرح یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع مسیح کی پہلی آمد کی پیش روئی کے لیے بھیجا گیا تھا, اور اسی طرح اس کا پیغام خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کی رات تیار کرے گا. میں اپنے پاؤں تک جھک گیا. میں نے اوپر دیکھا اور میں نے کہا کیا آپ اس آدمی کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں جناب. میں نے کہا کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں جناب. میں نے کہا کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں جناب. میں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں نے یہ اطلاع اخبار میں پڑھی تھی اور یہ عبادت کی پہلی رات تھی. میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا आप यहाँ किस तरह आए हैं? उसने कहा, कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि आप जो इलाही शिफा का काम करते हैं यहाँ आने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ चला आया। मैंने कहा, क्या आप सब एक दूसरे को जानते हैं? उसने कहा, नहीं जनाब। ओ मेरे खुदाया, वहाँ मैंने रूह कुछ की बड़ी कुदरत को देखा, कभी जिस चीज के मैं गलत होने के बारे में सोचता था। और मैं जानता था कि खुदा का यही फरिश्ता उन लोगों के साथ ताल्लुक रखता है जिनमें ये बातें पाई जाती हैं। अगरचे उनके दरमियान धोखा और बहुत सी मिलावट और बहुत से बुढ़ बढ़ाने वाले मौजूद थे, लेकिन वहाँ एक हकीकी मजमून भी मौजूद था, यानी मसीह। और मैंने देख लिया था कि ये सच था। ओ, बहुत साल गुजर गए हैं और लोग इबादत में रोयाएं वगैरह देखते आ रहे हैं। एक दफा अरकनसास में इबादत हो रही थी और जब मैं वहाँ खड़ा था तो मेरा ईमान है ये वही था, तो एक फोटोग्राफर ने इसकी तस्वीर ले ली थी। वो बिल्कुल इसी तरह के ऑडिटोरियम में इबादत थी। मैं उस वक्त उसकी वजाहत कर रहा था। जो लोग बैठे सुन रहे थे वो जानते थे, उनमें मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन और दीगर लोग मौजूद थे। और मैंने दरवाजे से उसको जाहिर होते हुए देखा जो गर्दिश करते हुए अंदर आ रहा था। मैंने कहा, अब मैं कुछ न बोलूंगा क्योंकि ये खुद आ गया है। वो गर्दिश करता ऊपर आ गया, लोग चीखने चिल्लाने लगे। ये उस जगह आया जहाँ मैं खड़ा था और मेरे सर के ऊपर गर्दिश करने लगा और मुझ पर ठहर गया। तो एक खादम दौड़ता हुआ आया और कहा, सुनो, मैं इसे देखता हूँ। और उसने उसे पूरी तरह अंधा कर दिया और वो लड़खड़ाकर पीछे गिर गया। आप उसकी तस्वीर किताब में देख सकते हैं कि वो किस तरह लड़खड़ाकर गिरा था और उसका सर नीचे हो गया था। आप उसकी तस्वीर में देख सकते हैं और उसने साबित कर दिया। उस वक्त अखबार के फोटोग्राफर ने फौरन तस्वीर ले ली, लेकिन खुदावंद तैयार नहीं था। और एक रात टेक्सास रियासत के शहर ह्यूस्टन में हो, जब लाखों लोगों का इस्तेमाल था, हम वहाँ 8,000 लोग मौसीकी के हाल में मौजूद थे। वहाँ शाम ह्यूस्टन कॉलिजियम में भी उसका नजारा दिखाई दिया था। और एक रात मुबाइसे के दौरान एक बैप्टिस्ट खादम ने भी मुझे कह दिया, तुम कोई चीज नहीं हो बल्कि एक घटिया रयाकार और मजहबी फरेबकार हो, तुम्हें शहर से बाहर निकाल देना चाहिए और ये काम मैं खुद करूंगा। भाई बोसवर्थ ने कहा, भाई ब्रैनम, क्या आप चाहेंगे कि इस तरह की बात वाकया हो? क्या आप खुदा के रूह को बुलाएंगे? मैंने कहा, नहीं जनाब, मैं झगड़े पर यकीन नहीं रखता। अंजील झगड़े के लिए नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए दी गई है। और फिर मैंने कहा, हम इस शख्स को जैसे भी कायल करें, ये शख्स ऐसा ही रहेगा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा, इसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब खुदा इसके दिल के साथ कलाम नहीं कर सकता तो मैं कैसे कर सकता हूँ। अगले रोज उसने बाहर आकर कहा, इससे नजर आता है कि ये क्या इरादा रखते हैं तवारीख ह्यूस्टन में। उसने कहा, नजर आ रहा है कि ये लोग अब क्या इरादा रखते हैं, जिस चीज की वो तबलीग कर रहे हैं उसे जारी रखने से खौफजदा हैं। बुजुर्ग भाई बोसवर्थ, जो 70 साल से ज्यादा उम्र के हैं, बड़े प्यारे बुजुर्ग भाई हैं, मेरे पास आए और अपना बाजू मुझ पर रखकर कहने लगे, भाई ब्रहनम, उसने कहा, अब आपका इरादा क्या है, इसे जारी ना रखा जाए? मैंने कहा, नहीं भाई बोसवर्थ, नहीं जनाब, मैं इसे जारी नहीं रखूंगा। मैंने कहा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कहा, जब हम प्लेटफॉर्म से उतरेंगे तो इससे महज झगड़ा पैदा होगा। मैंने कहा, अब मैं एक मीटिंग लूंगा और मैं नहीं चाहता कि यहाँ चीरफाड़ का काम हो। मैंने कहा, उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा, बात सिर्फ इतनी है कि वो ठनठनाता पीतल है। मैंने कहा, हमने उनके साथ बात करने की पहले भी कोशिश की, लेकिन उनके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा, वो अपनी बात पर यूं ही कायम रहेंगे। मैंने कहा, अगर वो एक मर्तबा सच्चाई को कबूल कर लें और फिर उसे कबूल ना करें तो बाइबल कहती है कि वो सरहदी लकीर पार कर चुके और उन्हें ना इस जहान में और ना आने वाले जहान में माफ किया जाएगा। वो इसे शैतान का काम कहेंगे और इसे बर्दाश्त ना करेंगे। वो एक मजहबी रूह के कब्जे में है जो कि अबलीस की तरफ से है। कितने लोग इस सच्चाई को जानते हैं? शैतान की रूह मजहबी है। जी जनाब, वो इंतहाई बुनियाद परस्त हैं जितना के वो हो सकते हैं। और बस, अगरचे बुनियाद परस्त कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बिल्कुल सच है। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे लेकिन उसके असर को कबूल नहीं करेंगे। ये सच है, निशानों और अजीब कामों को हमेशा खुदा ही जाहिर करता है। और खुदा ने कहा था आखिरी दिनों में इस तरह से होगा। और गौर करें, बुजुर्ग भाई बोसवर्थ मेरे, वो मेरे साथ जा रहे थे और वो बहुत थके हुए थे क्योंकि वो जापान से वापस आए थे। और उन्हें वहाँ जाना था। वो मेरे साथ लिबाक जा रहे थे और उन्हें थोड़ी सी नजले की तकलीफ थी, इसलिए वो और उनकी बीवी इसमें ना आ सके। और इस तरह वो गालबन ये ख्याल करते थे कि वो कालिब की तरह हैं। उन्होंने खड़े होकर कहा, ठीक है भाई ब्रैनम, आप जानते हैं कि वो बहुत अजीम इंसान है। उसने कहा, अगर आप नहीं करना चाहते, और कहा तो फिर मुझे करने दें। मैंने कहा, अरे भाई बोसवर्थ, मैं ये नहीं चाहता कि आप ऐसा करें कि आप झगड़ा करें। उसने कहा, झगड़े का लफ्ज भी नहीं होगा। अब इससे पहले कि मैं इसे बंद कर दूं, गौर से सुनिए। वो वहाँ चले गए। मैंने कहा, अगर आप झगड़ा नहीं करेंगे तो ठीक है। उन्होंने कहा, मैं वादा करता हूँ कि झगड़ा नहीं करूँगा। और उस रात समात खाना में तकरीबन 30,000 लोग थे। भाई वुड भी वहाँ मौजूद थे, उस वक्त वहाँ उस समात खाने में बैठे थे। मेरे लड़के ने कहा, या मेरी बीवी ने कहा, क्या आप उस इबादत में नहीं जा रहे? मैंने कहा, नहीं, मैं लड़ाई झगड़ा सुनने नहीं जाऊँगा। नहीं जनाब, मैं ये सुनने के लिए वहाँ नहीं जा सकता। जब एन वक्त हो गया तो किसी चीज ने कहा, तू वहाँ चला जा। मैंने एक टैक्सी ली और अपने भाई और बीवी और बच्चों के साथ वहाँ पहुँच गया। मैं ऊपर चढ़ा और बहुत बुलंदी पर 30वीं बालकोनी में बैठ गया। बुजुर्ग भाई बोसवर्थ किसी माहिर सफारतकार की तरह चलते हुए सामने आए। आप जानते हैं, उन्होंने कुछ तहरीर कर रखा था। उन्होंने बाइबल में से 600 वादे तहरीर कर रखे थे। उन्होंने कहा, अब डॉक्टर बेस्ट आए और इन वादों में से किसी एक को बाइबल में से गलत साबित कर दिखाएं। ये तमाम वादे बाइबल के अंदर मौजूद हैं, जो इस बात की शहादत के साथ ताल्लुक रखते हैं कि यीशु मसीह इन दिनों में बीमारों को शिफा देगा। अगर आप इन वादों में से किसी एक की भी बाइबल में से तर्दीद साबित कर दें, तो मैं बैठ जाऊंगा और आपके साथ मुसाफा करके कहूंगा, आप ठीक है। उसने कहा, जब मैं वहाँ आऊँगा तो इस पर बात करूँगा। वो आखिरकार चाहता था कि भाई बोसवर्थ को बिल्कुल लाजवाब कर दे, समझे। बस भाई बोसवर्थ ने कहा, ठीक है भाई बेस्ट, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और आप मुझे हाँ या ना में जवाब दें। भाई ने कहा, तो फिर हम अभी मुनाजरा तय कर लेंगे। और उसने कहा मैं इस पर बात करूँगा। उन्होंने नगरान खादम से सवाल पूछने की इजाज़त चाही, तो उसने कहा, हाँ आप पूछ सकते हैं। उसने कहा, भाई बेस्ट, क्या यहोवा के निजात से मुतलका नाम यीशु पर पूरे उतरते हैं, हाँ या ना? ये बात तय हो चुकी थी। इतना काम था। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कोई चीज अपनी रगों में सरायत करती महसूस की। ये तो मैंने खुद भी कभी नहीं सोचा था। देखें, और मैंने दिल में सोचा, ओ मेरे खुदाया, वो इसका जवाब दे नहीं सकता। वो जकड़ गया था। भाई ने कहा, अच्छा डॉक्टर बेस्ट, मैं खबरदार हो रहा हूँ। उसने कहा कि मैं इसका जवाब दूंगा। भाई ने कहा, मैं खबरदार हो रहा हूँ कि आप मेरे सबसे कमजोर सवाल का भी जवाब नहीं दे सकते। वो किसी खीरे की तरह सर्द था। वो जानता था कि वो कहाँ खड़ा था। कलाम के इस नविश्ते ने उसे बिठा ही दिया था। उसने कहा, आप अपने 30 मिनट पूरे कर लें, मैं इसके बाद जवाब दूंगा। और भाई बोसवर्थ ने कलाम के इस हवाला से उस शख्स को ऐसे नुक्ते पर फंसा दिया था कि उसका चेहरा इतना सुर्ख हो गया था जिससे शायद माचिस की तीली टकराकर जलाई जा सकती थी। वो गुस्से के साथ उठा, तमाम कागजात जमीन पर फेंक दिए और कैमल लाइट फिरके का वाज करने लगा। मैं बैप्टिस्ट रहा था, इसलिए मैं जानता था कि वो क्या ईमान रखते हैं। वो कभी नहीं, वो मुर्दों से जी उठने पर पैगाम दे रहा था। जब फानी गैर फानी को पहन लेगा, तब हमें इलाही शिफा मिलेगी। ओ मेरे खुदाया, जब हम गैर फानी हो जाएंगे तो फिर हमें क्या किसी शिफा की जरूरत होगी? जब ये फानी बदन गैर फानी को पहन लेगा तो ये मुर्दों में से जीतना होगा। हत्ता कि उसने यस्सु के उस मौजजे पर भी शक का इजहार किया जिसमें लाजर को जिंदा किया गया था। उसने कहा, लाजर फिर मर गया था, इसलिए ये एक आरजी काम था। देखें, और जब वो बोले जा रहा था तो उसने कहा, इलाही शिफा देने वाले को मेरे सामने लाओ और वो मेरे सामने मौजजा करे। और उससे उनके दरमियान बदमजाजी पैदा हो गई। भाई बोसवर्थ ने कहा, मैं हैरान हूँ भाई बेस्ट कि आप मेरे एक सवाल का भी जवाब नहीं दे सके। इस पर वो ठीक दीवाना हो गया और कहा, इलाही शिफा देने वाले को मेरे सामने लाओ और मैं उसे मौजजा करते देखूंगा। भाई ने कहा, भाई बेस्ट, क्या आप ईमान रखते हैं कि लोग निजात पाते हैं? उसने कहा, बिल्कुल रखता हूँ। भाई ने कहा, क्या आप पसंद करेंगे कि आपको इलाही निजात दहिंदा कहा जाए? उसने कहा, यकीनन नहीं, कभी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आप रूहों की मुनादी करने से इलाही नजात दहिंदा नहीं बन सकते। उसने कहा, अच्छा, यकीनन ऐसा नहीं बन सकता। भाई ने कहा, और जब भाई ब्रैनम जिस्म के लिए इलाही शिफा की मुनादी करते हैं तो इससे वो इलाही शाफी नहीं बन जाते। इलाही शिफा उसे शाफी नहीं बनाती, बल्कि वो लोगों को यीशु मसीह के पास लाते हैं। उसने कहा, उसे मेरे सामने लाओ और वो मेरे सामने मौजजा करे। मैं आज से लेकर एक साल तक उन लोगों का मुशाहिदा करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि मैं ईमान रखता हूं हूँ या नहीं। भाई बॉसवर्थ ने कहा, भाई बेस, ये कलूरी की तरह का दूसरा वाक्य मालूम होता है, अब स्लीप से नीचे उतरा तो हम ईमान लाएंगे। देखें इस तरह हो, वो आदमी आपे से बाहर हो गया। उसने कहा, मुझे उसे मौजदा करते देखने दो, मैं उसे मौजदा करते देखूंगा। निगरान खादमों ने उसे बैठा दिया। वहाँ एक पेंतिकोस्टल खादम भी खड़ा था, और जब वो शख्स प्लेटफॉर्म पर चिल्ला रहा था तो वो आखिर तक उसे पचकारता रहा। इस तरह उन्होंने उसे रोक दिया। बस भाई बॉसवर्थ ने कहा, यहाँ यहाँ नहीं नहीं। बस नगरानों ने उसे बिठा दिया। रेमन रिची ने उठकर कहा, क्या ये जनूबी बैप्टिस्ट ग्रुप की खसलत है? उसने कहा, ए बैप्टिस्ट खादमो, क्या जनूबी बैप्टिस्ट कन्वेंशन ने इस शख्स को यहाँ भेजा था या ये खुद ही अपनी मर्जी से आया था? उन्होंने जवाब ना दिया। उसने कहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो उनमें से हर एक को जानता था। उन्होंने कहा, वो अपनी मर्जी से आया है। मुझे भी मालूम था कि बैप्टिस्ट भी इलाही शिफा को मानते हैं। बस उसने कहा, वो अपनी मर्जी से आया था। बस उस वक्त ये सब तय हुआ था। फिर भाई बॉसवर्थ ने कहा, मैं जानता हूँ कि भाई ब्रैनम इबादत में मौजूद हैं। अगर वो यहाँ आकर सामीन को रुखसत करना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। बस हावर्ड ने कहा, आप यहीं बैठे रहें। मैंने कहा, मैं यहीं बैठा हूँ। और तब कोई चीज आई और गर्दिश करने लगी, और मैं जान गया कि ये खुदावंद का फरिश्ता था। उसने कहा, उठ और जा। तकरीबन 500 अफराद एक दूसरे का हाथ पकड़े कतार बनाकर प्लेटफॉर्म तक आ गए। मैंने कहा, ए अजीजो, मैं शाफी नहीं हूँ, बल्कि मैं आपका भाई हूँ। मैंने कहा, भाई बेस्ट, कोई नहीं। या भाई बेस्ट, मैंने कहा, मैं आपके हक में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता। आप मेरे भाई हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको अपना दावा साबित करने का हक है, और इसी तरह मुझे भी। मैंने कहा, बेशक, आप भाई बॉसवर्थ के पेश करदा नुक्ता को साबित नहीं कर सके। आपने देख लिया है, ना ही कोई और शख्स ऐसा कर सकता है जिसने बाइबल अच्छी तरह पढ़ी हो और इन बातों को जानता हो। मैंने कहा, और जहाँ तक शिफा का ताल्लुक है, मैं उन्हें शिफा नहीं दे सकता भाई बेस्ट, लेकिन मैं हर रात को यहाँ होता हूँ। अगर आप खुदावंत को मौजजा करता देखना चाहते हैं तो यहाँ आए। खुदा हर रात ऐसे काम करता है। और उसने कहा, मैं चाहूंगा कि आप किसी को भी मेरे सामने शिफा दें और मुझे उसको देखने दें। शायद आप उनको हिप्नोटिज्म से उन्हें हिप्नोटाइज कर लेते हैं, लेकिन कहा, मैं आज से लेकर एक साल तक उसका मुशाहिदा करूंगा। मैंने कहा, ठीक है भाई बेस्ट, आपको उन्हें देखने का हक हासिल है। उसने कहा, ये कुछ भी नहीं है, मगर तुम बेअकल जनूनी लोग ऐसी चीजों पर ईमान रखते हो। बैप्टिस्ट ऐसी बेवकूफी की बातों पर ईमान नहीं रखते। भाई बॉसवर्थ ने कहा, एक लम्हा के लिए। भाई ने पूछा, उन दो हफ्तों की इबादत के दौरान कितने लोग हैं जिनका ताल्लुक होस्टन की बैप्टिस्ट कलीसियाओं से है और वो इन इबादत में आते रहे हैं? आप साबित कर सकते हैं कि जब से भाई ब्रैनम यहाँ आए हैं, कादरे मुतलिक खुदा ने आपको शिफा दी है और 300 से ज्यादा लोग उठ खड़े हुए। भाई ने कहा, इससे क्या नतीजा निकला? उसने कहा, ये बैप्टिस्ट नहीं है। उसने कहा, कोई भी शख्स किसी भी तरह गवाही दे सकता है, लेकिन वो इससे सच नहीं बन जाती। भाई ने कहा, खुदा का कलाम इसे दुरुस्त कहता है और आप इसका सामना नहीं कर सकते। लोग भी कह रहे हैं ये दुरुस्त है और आप इसे रद्द नहीं कर सकते। बस आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, ये इस तरह है। मैंने कहा, भाई बेस्ट, मैं सिर्फ सच्चाई बयान करता हूँ। अगर मैं सच्चा हूँ तो खुदा सच्चाई की हमायत करने का पाबंद है। मैंने कहा, वो अगर नहीं करता, अगर वो सच्चाई की हमायत नहीं करेगा, तो वो खुदा नहीं हो सकता। और मैंने कहा, लोगों को शिफा मैं नहीं देता। मैं एक नेमत के साथ पैदा हुआ था ताकि इन कामों को होते देखूं। मैंने कहा, मैं जानता हूं कि लोग मुझे गलत समझते थे, लेकिन मैं अपने दिल के एतकाद को पूरा करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा, मेरा ईमान है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। उसी का रूह आता है और रोया दिखाता है। अगर कोई सवाल करे तो वो नाजिल होता है और तलाश कर लेता है। मैंने कहा, बस इतनी सी बात है। लेकिन मैंने कहा, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और मैंने कहा, अगर मैं सच्चाई बयान करता हूँ तो खुदा इसका पाबंद है कि सच्चाई की गवाही दे। और उसी लम्हा कोई चीज आई। खुदावंद का फरिश्ता आ गया था और नीचे उतर रहा था, और अमेरिकन फोटोग्राफर एसोसिएशन के मुताबिक होस्टन डुगलस स्टूडियोज टेक्सास वालों ने एक बड़ा कैमरा लगाए रखा था। उन्हें तस्वीरें लेने से मना कर दिया गया था, मगर उन्होंने उसकी तस्वीर ले ली। जब वो वहाँ मिस्टर बेस्ट की तस्वीर लेने लगे तो उसने कहा, लेकिन ये मेरे वहाँ पहुँचने से पहले की बात थी। उसने कहा, जरा ठहरिए, मैं यहाँ 6 तस्वीरें बनवाऊंगा। उसने कहा, अब मेरी तस्वीर खींचिए, और उसने अपनी उंगली उस मुकद्दस बुजुर्ग सूरत आदमी की नाक पर रख दी। इस तरह अब मेरी तस्वीर खींचिए, और उन्होंने खींच ली। फिर उसने मुक्का बनाकर ऊपर किया और कहा, अब मेरी तस्वीर लें, और उन्होंने बिल्कुल उसी तरह तस्वीर ले ली। फिर उसने कोई और पोज बनाकर तस्वीर बनवाई। उसने ने कहा ये आपको मेरे मैगजीन में नजर आएंगी बिल्कुल इसी तरह के पोज में। भाई बोसवर्थ खड़े रहे लेकिन उन्होंने कुछ न कहा। इसके बाद उन्होंने उस रोशनी की तस्वीर ले ली। उस रात घर जाते हुए उसे एक कैथलिक नौजवान ने लिया था। उसने दूसरे नौजवान को कहा, उसने कहा आपका इसके मुतालिक क्या ख्याल है? उसने कहा मैं जानता हूँ, मैंने इस पर तनकीद की थी। जब एक औरत के गले का गल्लड़ गायब हो गया था तो मैंने कहा उसने उसको हिप्नोटाइज किया है। उसने कहा यहाँ मैं गलती पर हूँ। और उसने कहा उस तस्वीर के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? उसने कहा मैं नहीं जानता। उन्होंने इस तस्वीर को तेजाब में डाला, ये उसकी तस्वीर है, अगर आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं। वो घर पहुंचे और उसने सिगरेट पिया। फिर उसने अंदर जाकर भाई बोसवर्थ की तस्वीर निकाली तो वो गायब हो गई थी। फिर उसने दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी तस्वीर निकाली तो वो सब गायब हो गई थी। खुदा ने अपने बरगजीदा बुजुर्ग शख्स की तस्वीर उसके साथ न बनने दी। जब वो रयाकार उसकी नाक पकड़े और हाथ उठाए या उसकी नाक के नीचे अपना घोंसा ताने हुए था, खुदा ने उसे होने ही ना दिया। उससे अगली तस्वीर निकाली गई और वो उस रोशनी की थी। और उन्होंने बताया कि उस शख्स को उस रात दिल का दौरा पड़ गया। उस तस्वीर को वाशिंगटन डीसी भेजा गया और उसे उसके जुमला हकूक के हमरा वापस भेजा गया। और जॉर्ज जे लेसी, जो एफबीआई के उंगलियों के निशानात और मसावदात के तहकीक के इदारे का सरबरा था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है, वहाँ लाया गया और वो दो दिन तक कैमरे, रोशनी और हर एक चीज का मुआयना करता रहा। और जब हम उस दोपहर को आए तो उसने कहा रेवरेंड ब्रैनम मैं भी आप पर तनकीद करता रहा हूँ। उसने कहा और मैं कहा करता था कि ये नफ्सियाती मसला है। किसी ने कहा था कि उसने रोशनी और इस तरह की बातें देखी हैं और कहा आप जानते हैं कि पुराना रयाकार कहा करता था उसका इशारा गैर ईमानदारों की तरफ था। और कहा क्या ये हाला उन तस्वीरों में मसीह के गिर्द और मुकलसों के गिर्द भी है? उसने फिर कहा ये रोशनी का हाला महज नफ्सियाती अख्तरा हो सकता है। लेकिन उसने कहा रेवरेंड ब्रैनम कैमरे की मशीनी आंख किसी नफ्सियाती मामले को नहीं देख सकती। रोशनी नेगेटिव से टकराई थी और उसकी तस्वीर बनी थी और ये ऐसे ही हुआ था। और उसने कहा मैंने उसे उनके हवाले कर दिया। उसने कहा ओ जनाब क्या आपको मालूम है कि ये कैसी मौसर होगी? और मैंने कहा मेरे लिए नहीं भाई, मेरे लिए नहीं। और बस उसने कहा हो सकता है आपके जीते जी इसका असर ना हो, लेकिन किसी दिन अगर तहजीब आगे बढ़ती रही और मसीहत बाकी रही तो किसी वक्त इसके मुतालिक कुछ होगा। इसलिए अजीजो अगर आज रात, अगर यही इबादत इस जमीन पर हमारी आखिरी इबादत हो, लेकिन मैं और आप कादरे मुतलिक खुदा की हजूरी में बैठे हुए हैं, मेरी गवाही सच्ची है, बातें बहुत सारी हैं, इन्हें लिखने से बहुत सी किताबें बन जाएंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इनसे वाकिफ हो जाएं। आप में से कितने हैं जिन्होंने तस्वीर के अलावा इस रोशनी को कलाम सुनाने के दौरान मेरे ऊपर देखा है? इस पूरी इमारत में जितने लोगों ने इसे देखा है अपने हाथ बुलंद करें। देखें 8 या 10 हाथ बुलंद हो गए हैं। और आप कह सकते हैं क्या ये मुमकिन है कि ये दूसरों को नजर आए और मुझे ना आए? जी हाँ जनाब। और जिस सितारे के पीछे मजूसी चल रहे थे वो माहिरीने फलकियात के पास से गुजरा, लेकिन उनके सिवा उसे किसी ने न देखा। ये सिर्फ उन्हीं को दिखाई दिया था। अलीशा वहाँ खड़े तमाम आतशी रथों और दीगर चीजों को देख रहा था। जिहाजी ने भी इर्द गिर्द देखा लेकिन वो कुछ देख ना सका। खुदा ने फरमाया और उसकी आंखें खुल गई ताकि वो देख सके, और फिर उसने उन्हें देखा। देखें अगरचे वो एक अच्छा नौजवान था लेकिन जब उसने इर्द गिर्द देखा तो उसे कुछ नजर न आया। यकीनन ऐसा ही है, ये किसी को दिखाई देता है और किसी को दिखाई नहीं देता, ये सच है। लेकिन जिन लोगों ने उसे कभी नहीं देखा, उसे कभी नहीं देखा, और वो जिन्होंने अपनी कुदरती आंख से इसे देखा है लेकिन कभी उसकी तस्वीर नहीं देखी, तस्वीर देखने वालों के पास आंख से देखने वालों की निस्बत ज्यादा बड़ा सबूत है, क्योंकि आंख से देखने वालों से गलती भी हो सकती है, ये नजर का फ्रेब भी हो सकता है, क्या ये दुरुस्त है? लेकिन ये नजर का फ्रेब नहीं है, ये एक सच्चाई है, क्योंकि साइंस ने तहकीक करके इसे साबित किया है, ये एक सच्चाई है। और बस ये काम खुदावंद यीशु ने किया है। अगर आप कहें भाई ब्रैनम आपके ख्याल में ये रोशनी का हाला क्या है, मेरा ईमान है कि ये वही आग का सतून है जिसने मिस्र से फलस्तीन तक बनी इसराइल की रहनुमाई की। मुझे यकीन है कि ये वही नूरानी फरिश्ता है जो जेल खाने में पतरस के पास आया और उसको छुआ, और फिर वो दरवाजा खोलकर पतरस को बाहर रोशनी में ले गया। और मेरा ईमान है कि ये यीशु मसीह है जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। आमीन। यीशु आज भी वही है जो गुजरे वक्त में था, वो हमेशा ही यीशु रहेगा। और जब मैं इस नूर के हाले की बात कर रहा हूँ तो ये वही है जो इस तस्वीर में है। ये उस मकाम पर है जहाँ मैं खड़ा हूँ, 2 फुट के फासले पर खड़ा है। ये सच है, मैं इसे अपनी आंखों से तो नहीं देख रहा, लेकिन मैं जानता हूँ वो यहाँ मौजूद है। मैं जानता हूँ ये ठीक मेरे अंदर मौजूद है। काश आप इस फर्क से वाकिफ हों। जब कादरे मुतलिक खुदा की कुदरत किसी को पकड़ लेती है तो उसे चीजें कैसी फर्क नजर आती हैं? ये एक चैलेंज है जो हर एक के लिए है। मैं बीमारों के लिए दुआ करने का कोई इरादा नहीं रखता, मैं एक जनाजे के लिए जा रहा हूँ, लेकिन रोया लोगों पर ठहरी हुई है। खुदा ये जानता है। मैं दुआया कतार नहीं बुलाऊंगा, बल्कि आप अपनी जगह पर बैठे रहें। आप में से कितने लोगों के पास दुआया कार्ड नहीं है? मैं आपके हाथ देखना चाहता हूँ। कोई शख्स जिसके पास दुआया कार्ड ना हो, आपके पास दुआया कार्ड नहीं है? यहाँ एक स्याह फाम बहन है, मैं आपको हाथ उठाए हुए देख रहा हूँ, क्या ये सच है? सिर्फ आप खड़ी हो जाएं, एक मिनट में मैं आपको वाजे कर सकता हूँ। मैं नहीं जानता कि रूल कुछ क्या कहेगा, लेकिन आप पूरी दयानतदारी से मेरी तरफ देख रही हैं। क्या आपके पास दुआया कार्ड नहीं है? अगर कादर मुतली खुदा मुझे आपकी परेशानी बता दे, ये मैं सिर्फ आगाज करने के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ इब्तदा करने के लिए। क्या आपका ईमान है कि मैं आपको इल्म है? मुझ में कुछ नहीं, मुझ में कोई खूबी नहीं है। अगर आप एक शादीशुदा खातून हैं, तो मैं आपके खावन से भी अच्छा नहीं, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। लेकिन यीशु मसीह खुदा का बेटा है और उसने इन चीजों को साबित करने के लिए अपने रूह को भेजा है। अगर खुदावन मुझे बता दे कि आपको क्या तकलीफ है और आपको मालूम है कि आपके साथ राबता करने के लिए मेरे पास कोई तरीका नहीं है, क्या आप अपने पूरे दिल से ईमान लाएंगी? खुदा आपको बरकत दे। आपको हाई ब्लड प्रेशर था, अब खत्म हो गया है। आपको यही बीमारी थी, क्या ये दुरुस्त है? तो फिर बैठ जाइए। आपको एक बार उस पर ईमान लाने की जरूरत है। मेरा दावा है कि कोई भी उस पर ईमान लाए। देखे, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मार्था खुदावंद यीशु के पास आई, लेकिन वो नेमत उस वक्त तक काम नहीं कर सकी थी, अगरचे बाप ने यीशु को पहले ही दिखा दिया था कि वो क्या करने जा रहा है, तो भी वो काम नहीं कर सकता था। लेकिन उसने कहा, खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। उसने कहा, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा खुदा तुझे देगा। उसने कहा, क्यामत और जिंदगी मैं हूँ, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान लाती है? सुनिए उसने क्या कहा। उसने कहा, हाँ खुदावंत, मैं ईमान लाती हूँ, जो कुछ तूने कहा ये सच है। मैं ईमान लाती हूँ कि खुदा का बेटा जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। ये उसकी इनकसाराना सोच की रसाई थी। खातून, आप कुछ फर्क महसूस करती हैं, क्या आप नहीं करती? ये सच है। आपके साथ एक और खातून बैठी हुई हैं, जिसको जोड़ों का दर्द और जनाना तकलीफ है। खातून, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? वो खातून जिसने सुर्ख लिबास पहना हुआ है, जरा खड़ी हो जाएं। आप इतनी करीब थी कि रोया आप पर ठहरी है। जोड़ों का दर्द और जनाना तकलीफ, क्या ये सच है? आपकी जिंदगी में कुछ और भी है। आपने एक अच्छी रास्त नजर पाई है। आपने अपनी जिंदगी में बहुत सी परेशानियों को पाया है और बहुत सारी तकलीफों को भी, और ये तमाम तकलीफें आपके किसी प्यारे की वजह से आई हैं, और वो आपका शोहर है। वो शराबी है, वो गिरजाघर नहीं जाता। अगर ये सब सच है तो अपना हाथ उठाएं। खातून, खुदा आपको बरकत दे। अब आप अपने घर जाइए और अपनी बरकत को हासिल कीजिए। आपको शिफा मिल चुकी है। रोशनी आपके गिर्द गर्दिश कर रही है। इससे आगे एक आदमी बैठा है। आप जनाब, क्या आप ईमान लाते हैं? क्या आप पूरे दिल से ईमान लाते हैं? आपकी एक हिस खत्म हो चुकी है, यानी सूंघने की हिस। क्या ये सच है? अगर ये सच है तो अपना हाथ लहराइए, अपना हाथ अपने मुंह पर लाकर इस तरह कहें, खुदावन यीशु, मैं पूरे दिल के साथ तुझ पर ईमान लाता हूँ। खुदा आपको बरकत दे, आप जा सकते हैं और आपने शिफा पा ली है। खुदा पर ईमान रखें। पीछे वाले तमाम लोग इस नूर के मुतल्लिक क्या सोचते हैं? क्या आप ईमान लाते हैं? उसकी तहजीम करें। पीछे कोने में एक खातून बैठी हुई है, मैं रोशनी उसके ऊपर ठहरे हुए देख रहा हूँ। मेरे पास कुछ बताने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मुतलका आदमी पर रोशनी ठहरी हुई है। ये रोशनी ठीक यहाँ इस औरत पर ठहरी हुई है। एक मिनट मुझे देखने दें कि यहाँ क्या मसला है। ऐसा है कि इस खातून को दिल की तकलीफ है, वो सीधी मेरी तरफ देख रही है और इसके साथ इसका शोहर भी मौजूद है और इसका शोहर भी किसी किस्म की बीमारी का शिकार है। वो बेचैन और बीमार है। क्या मैं सच नहीं कह रहा जनाब? अगर ये सच है तो अपने हाथ बुलंद करें। ये दुरुस्त है खातून, ये आप हैं जिसने दुपट्टा लिया हुआ है। भाई साहब, क्या ये सच नहीं है? क्या आप आज बहुत बेचैन नहीं है? इस आदमी के पेट में भी खराबी है। ये दुरुस्त है। क्या आप पूरे दिल से इस पर ईमान रखते हैं? आप दोनों, क्या आप इसे कबूल करते हैं? जनाब, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, मैं आपको हाथ उठाए देख रहा हूँ। आपको तंबाकू नोशी की आदत है, इसे तरक कर दें। आप सिगार पीते हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपको बीमार करता है। क्या ये सच है? अगर सच है तो अपना हाथ इस तरह लहराएं। यही चीज आपको बीमार करती है। आपके असाब पर इसका बुरा असर पड़ता है। इस मकरूह चीज को दूर फेंक दें और इसे दोबारा ना पिएं। आप इस पर गालिब आएंगे तो ठीक हो जाएंगे और दिल की तकलीफ आपकी बीवी को छोड़ देगी। क्या आप इस बात पर ईमान लाते हैं? क्या ये सच नहीं है? मैं यहाँ से आपको नहीं देख सकता, ये आपको पता है, लेकिन आपने अपने सामने की जेब में सिगार डाले हुए हैं। ये सच है। इस चीज को निकाल फेंकें और अपना हाथ अपनी बीवी पर रख दें। खुदा के सामने इकरार करें कि आप अब तक सिगार पीते रहे हैं तो आप तंदुरुस्त होकर घर जाएंगे। आप दोनों मियां बीवी सेहतयाब हो जाएंगे। खुदावन यीशु का नाम मुबारक हो। क्या आप पूरे दिल से ईमान रखते हैं? एक खातून बैठी सीधी मेरी तरफ देख रही है। आप जो सामने, आप जो यहाँ सामने की कतार में बैठी हुई हैं, एक और खातून मुझे मेरी तरफ देख रही है, बिल्कुल सामने बैठी हुई है। आपको खातून, क्या आपके पास दुआया कार्ड मौजूद है? जो यहाँ बैठी है, क्या आपको दुआया कार्ड नहीं मिला? क्या आप पूरे दिल से ईमान लाती हैं? क्या आपको यकीन है कि यीशु मसीह आपको तंदुरुस्त कर सकता है? जो खातून इनके साथ बैठी हैं, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? खातून, क्या आपके पास दुआया कार्ड है? आपके पास नहीं है? क्या आप भी ठीक होना चाहती हैं? क्या आप चाहती हैं कि आपके पेट की तकलीफ दूर हो जाए और आप पहले की तरह खा पी सकें? क्या आप ईमान लाती हैं कि यीशु अब आपको शिफा देगा? अगर आप ईमान रखती हैं कि यीशु मसीह ने आपको शिफा दे दी है तो खड़ी हो जाएं। आपके मैदे में अल्सर था, क्या ये नहीं था? ये किसी असाबी मसले के बाइस पैदा हुआ। आप बहुत अरसा असाबी कमजोरी का शिकार रही हैं। खास तौर पर आपका मैदा तेजाब ज्यादा पैदा करता है और जब आपको डकार आते हैं तो आपके दांत खट्टे हो जाते हैं। ये सच है। जी हाँ जनाब, ये हाजमे का अल्सर है और ये आपके निचले हिस्से में वाकया है। इसमें कभी कभी जलन भी होती है, खास तौर पर जब आप मक्खन के साथ तोस खाती हैं। क्या ये सच है? मैं आपके जेन को नहीं पढ़ रहा, बल्कि पाक रू लाखता है। आपको शिफा मिल गई है, सेहत याब होकर घर जाएं। इस सिमत में जो पीछे बैठे हैं, उनका क्या हाल है? अगर आप में से किसी के पास दुआया कार्ड ना हो तो अपना हाथ बुलंद करें। कोई जो बगैर दुआया कार्ड की हो, ठीक है, तहजीम करें, पूरे दिल से ईमान रखें। जो ऊपर बालकनी में है, उनका क्या हाल है? खुदा पर ईमान रखें। मैं ये सब कुछ अपने आप से नहीं कर सकता, ये सिर्फ उसका फजल है। क्या आप इस पर ईमान लाते हैं? मैं सिर्फ वही कह सकता हूँ जो खुदावंद मुझे दिखाए, जैसे आपका ईमान। मैं ये आपके ईमान को जुम्बश देने के लिए कहता हूँ। और फिर देखता हूँ कि खुदा कैसे मेरी रहनुमाई करता है। क्या आप ये महसूस करते हैं कि इसे करने वाला आपका ये भाई नहीं है? आप खुदा की हजूरी में खड़े हैं। इसे करने वाला मैं नहीं, बल्कि आपका ईमान इस काम को करवाता है। मैं इसको काम में नहीं ला सकता, ये आपका ईमान कर रहा है। मेरे पास इसे चलाने का कोई तरीका नहीं। सिर्फ एक मिनट, इस कोने में एक स्याह फाम बूढ़े शख्स को बैठे देखता हूँ। उसने चश्मा लगाया हुआ है। जनाब, क्या आपके पास दुआया कार्ड है? एक मिनट, अपने पांव पर खड़े हो जाएं। क्या आप मुझे खुदा का खादम तस्लीम करते हैं अपने पूरे दिल के साथ? आप किसी और शख्स के बारे में सोच रहे हैं? अगर ये सच है तो अपना हाथ बुलंद करें, क्योंकि इसे करने वाला मैं आपका भाई नहीं हूँ। अब आपके पास दुआया कार्ड नहीं है। आप किसी सूरत दुआया कतार में नहीं आ सकते थे, क्योंकि आपके पास दुआया कार्ड नहीं है। अब अगर किसी के पास दुआया कार्ड मौजूद है तो वो खड़ा ना हो, समझे, क्योंकि आपको कतार में आने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं रोशनी को इस शख्स पर ठहरे हुए देख रहा हूँ। अभी रोया जाहिर नहीं हुई। भाई, मैं आपको शिफा नहीं दे सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये सिर्फ खुदा ही कर सकता है। लेकिन आपके पास ईमान है, आप ईमान रखते हैं, और कोई बात है जो इसका किसी भी तरीके से सबब बनी। अगर कादरे मुतली खुदा बता दे कि इस आदमी को क्या तकलीफ है, तो बाकी लोग शिफा हासिल करेंगे। एक और आदमी है जो मुझसे 10-15 गज के फासले पर खड़ा है। मैंने अपनी जिंदगी में उसे कभी नहीं देखा। वो आदमी यहाँ खड़ा है। अगर कादरे मुतली खुदा जाहिर कर दे कि इसे क्या मसला है, तो बाकी सब लोगों को ठीक होकर यहाँ से जाना चाहिए। तो फिर खुदा और क्या कर सकता है? क्या ये दुरुस्त है?
सर,
जनाब, आपके साथ कोई मसला नहीं है। आप कमजोर हैं और इसी तरह बड़े गदूद की वजह से रात को उठना पड़ता है, लेकिन ये आपकी परेशानी नहीं है। आपकी परेशानी आपके बेटे के बारे में है। आपका बेटा किसी सरकारी अदारे में है और दोहरी शख्सियत का मालिक है। क्या ये सच है? अपने हाथों को लहराइए अगर ये सच है तो। ये ऐन सच है। कितने ईमान रखते हैं कि खुदा का बेटा यीशु मसीह यहाँ मौजूद है? आइए खड़े होकर उसकी तमजीद करें और अपनी शिफा को हासिल करें। कादरे मुतली खुदा, जिंदगी के बानी और हर अच्छी नेमत के अता करने वाले, यहाँ मौजूद है। वही खुदावन यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। और ऐ शैतान, तूने बहुत अरसा लोगों को धोखा दिया है, अब इनमें से निकला। मैं तुझे जिंदा खुदा के नाम का वास्ता देता हूँ, जिसकी हजूरी आग के सतून की शक्ल में मौजूद है। इन लोगों को छोड़ दे और यीशु मसीह के नाम से इनमें से बाहर निकला। आप में से हर एक अपने हाथ बुलंद करके खुदा की तारीफ करे और हर एक शख्स अपनी शिफा को हासिल करे।